श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वयं तोषाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिं हरद्भिर् चिरलोकपालै कृत कोटेदित पादपीठः। हरे कृष्ण। कल से हम लोग विदुर जी के उत्तर स्वरूप महाभागवत उद्धव के उद्गार को सुन रहे हैं। उद्धव जी भगवान के नित्य परिकर हैं। कृष्ण विरह से संतप्त होकर उनके अत्यंत महत्वपूर्ण अस्मोर्ध माधुर्य संपन्न गुणों का स्मरण कर रहे हैं। यद्यपि विदुर जी अनेकों प्रकार के प्रश्न किए हैं, एक एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्मरण करते हुए कई लोगों के विषय में पूछे हैं, मुख्य रूप से जादवों और पांडवों के विषय में। लेकिन उद्धव उन सभी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए विशेष कृष्ण स्मृति के कारण कृष्ण के गुणों का स्मरण मात्र कर रहे हैं, और अत्यंत विरह व्यथित होने के कारण विलाप कर रहे हैं। एक एक लीला एक एक गुण उद्धव के हृदय में शलाका की तरह चुभ रही हैं। इसलिए भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण भगवत्ता का स्मरण करते हुए एक साधारण मनुष्य सा व्यवहार करने पर उद्धव का हृदय व्यथित हो जाता है। जब उन लीलाओं का स्मरण करते हैं तो विशेष दुखी हो जाते हैं। उसी क्रम में यह श्लोक 21वां जिसको अभी हम लोग रिपीटेशन किए, स्वयं तो साम्यातिशयस्त्रधीशः स्वराज लक्ष्म्याप्त समस्त कामः बलिम हरद्भिर् चिरलोक पालै किरीट कोटे दित पादपीठः। 21 और 22 श्लोक एक साथ है। इस श्लोक में उद्धव जी भगवान के भगवत्ता का विशेष रूप से स्मरण करते हुए कहते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण असाम्यातिशय, असाम्यातिशय का अर्थ है जो सभी विषय में सबसे बढ़कर है, और असाम्यातिशय त्र्यधीशः स्वयं तु असाम्यातिशय त्र्यधीशः, जो स्वयं अस्मोर्ध तीनों पुरुषों तीनों लोकों तीनों गुणों के तीनों धामों के सबके अधीश्वर हैं, और स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम, और अपने स्वयं अंतरंगा शक्ति के आनंद में आनंदित रहते हैं, अपने परमानंद स्वरूप संपत्ति से जो प्राप्त भोग है उसमें जो संतुष्ट रहते हैं, परमानंद में एकदम सुख स्वरूप स्वयं आत्माराम जो है, अथवा स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम, वह वैकुंठ की संपत्ति और प्राकृत जगत के सुख समृद्धि जो जिनके स्वरूप में है, जिनकी स्वरूपगत शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, हलादिनी शक्ति, सच्चित आनंद स्वरूपा, कहीं से बाहर से कुछ सुख की सामग्री उनको नहीं लेना है, जिनके स्वरूप में ही सुख है, जो परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और परमानंद स्वरूप संपत्ति शक्ति स्वयं उनको प्राप्त है, कहीं से प्राप्त करने जाना नहीं पड़ता है, या कुछ सुख के भोग के सामग्री बाजार से खरीद कर लावे, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जिनके साथ सर्वदा रहता है वह है स्वराज्य लक्ष्म्याप्त समस्त काम। जितनी कामनाएं जितनी इच्छाएं हैं कृष्ण की, वो स्वयं से पूरी होती है, बाहर से नहीं। और इसके साथ जिनके चरणों में बलिम हरदभीर चिरलोक पालई, बड़े बड़े लोकपाल, इंद्रादि लोकपाल देवता लोग चीर काल से, अनंत काल से जिनके चरणों में भेंट दे रहे हैं, भेंट अर्पित करते हैं, और भेंट देने की इतनी बड़ी होड़ लगी रहती है कि एक साथ हजारों लाखों लोग जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और उस भेंट अर्पण में इतनी भीड़ हो जाती है कि उनके मस्तक का जो मुकुट है आपस में टकराने लगता है। कहाँ? जहाँ भगवान अपना चरण रखते हैं, उनके चरण रखने के चौकी पर सभी लोकपालों का मुकुट टकराता है, और उससे आवाज होता है, अभी एक प्रणाम किए तब तक दूसरा। खूब सुंदर सोने हीरे से मढ़े हुए मुकुट पहने हैं, किरीट कोटे दितपाद पीठ, जिनके चरण रखने की चौकी पर बड़े बड़े लोकपालों का मस्तकस्त मुकुटों का अग्रभाग टकराता है। स्तुत पाद पीठ, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। ऐसे सर्वलोक महेश्वर, सारे लोकपालों के स्वामी, सर्वाराध्य सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन के कंकर्ज कर रहे हैं, यह उद्धव को चुभ रहा है, यह स्मरण उद्धव के हृदय में सलाका की तरह चुभ रहा है। हाय हाय, भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन से कंकर्ज कृतवान, हा भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन की दास्ता किए, ऐसे श्री भगवान उग्रसेन के नौकर की तरह हाथ जोड़कर सामने खड़े रहते थे। कौन कह रहे हैं कि वह श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, जो तीनों पुरुषों मतलब कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, तीनों पुरुषों के जो ईश है, स्वामी है, और तीनों लोकों के, तीन लोक का मतलब प्राकृत ऊपर नीचे बीच का लोक तो है ही, लेकिन जो भगवान के निजी धाम है वैकुंठ गोलोक धाम, वृंदावन मथुरा और द्वारिका, इन तीन पुरियों के अथवा तीन लोकों का अर्थ जो तीन शक्तियां हैं, त्रधीशह का अर्थ ये भी है, माया जीव और स्वरूप शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और अंतरंगा शक्ति, इन तीन शक्तियों के जो अधीश्वर है, त्रयधीशह का अर्थ तीनों लोक के स्वामी, तीनों धामों के स्वामी, तीनों पुरुषों के स्वामी और तीनों शक्तियों के स्वामी, बहिरंगा तटस्था और अंतरंगा शक्ति के जो अधीश्वर हैं, वो मायापति हैं, मायाधीश हैं। कृष्ण के समान भी कोई नहीं हो सकता है, बढ़कर तो होने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति कृष्ण से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे भगवान अपनी कृपा से, अपनी भक्ति से प्रभावित होकर प्रेम वश किसी के पुत्र बन जाए, पिता माता स्वीकार कर ले, तो बड़ा हो सकता है, लेकिन ऐश्वर्य में कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हो सकता। माधुर्य में, प्रेम विवशता में वो बड़ा हो सकता है, लेकिन कृष्ण के बराबर कोई नहीं हो सकता। अपनी स्वरूप शक्ति के परमानंद रूप संपत्ति से श्री कृष्ण की सर्व कामना पूर्ण है, इसलिए वो आत्मा राम है, पूर्ण काम। श्री भगवान का विशेष नाम है सच्चिदानंद, परमानंद, आत्मा राम, पूर्ण काम। सभी प्रकार की कामना उनको स्वतः पूर्ण हो जाती है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अंतर्गत अनंत प्रजापति लोग, शिव ब्रह्मादि इंद्रादि देवगण चीर काल से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, कृष्ण के चरण चौकी को नमस्कार करते हैं। उस समय उन लोकपालों के मुकुट आपस में टकराकर झंकृत होता है, झंकार निकलता है, मानो ये उस चरण पीठ का जयगान कर रहे हों। अभी एक प्रणाम किए तब तक दूसरा करते हैं, कभी कभी दो तीन का एक बार टकरा जाता है, तो इस तरह से झंकार निकलता है। ऐसे सामर्थवान सर्वश्रेष्ठ सर्वाराध्य ईश्वर होकर भी कितने भक्त वत्सल हैं, भक्तों का कंकर्ज करते हैं, नौकरी करते हैं। हाय हाय, मैं उनको कैसे भूल सकता हूं। हे विदुर, मेरे हृदय में वो सारी लीलाएं स्मृत हो रही हैं और स्मृति के कारण मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं कैसे उनको भूल सकता हूं। जो ब्रह्मा शिव आदि देवगणों से भी उत्कृष्ट प्रभुत्व रखते हैं, वो क्या है उत्कृष्ट प्रभुत्व? श्री कृष्ण के सबसे बड़ी प्रभुता क्या है कि उग्रसेन की सेवकाई करते हैं। भक्त वश्य रूप माधुर्य को मैं कैसे भूल सकता हूं, अपने भक्त भक्तों के जो अधीन है उनको मैं नहीं भूल पा रहा हूं, बार बार वही याद आ रहा है। इस प्रकार दो श्लोकों में विलाप कर रहे हैं। इसके साथ आगे वाला श्लोक 22वां श्लोक में स्पष्ट रूप में कृष्ण के व्यवहार का वर्णन करते हैं। ततस्य कैंकर्यमलं भृतानो विगलापयन्त्यंग यदुग्रसेनम् तिष्ठन् निशर्णम् परमेष्टिधिष्णे न्यबोधयद्देव निधारयेति। हे अंग, हे परमादरणीय विदुर जी, तिष्ठन् परमेष्टि निशर्णम् उग्रसेनम् देव निधारय इति यत् न्यबोधयत्। हे परमादरणीय विदुर जी, स्वयं खड़ा होकर राज आसन पर, राज सिंहासन पर बैठे हुए सुधर्मा सभा में उग्रसेन के प्रति हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देव, कृपा करके मेरी बात सुनिए, मेरे लिए आपकी क्या विशेष आज्ञा है, मैं आपका सेवक, आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं। ऐसा जो विज्ञापन करते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तस्य तत् कैंकर्य भृतान न अलम विगलापयति। उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वह कैंकर्य हम भृतों को अत्यधिक अतिशय व्यथित कर रहा है। जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो हमारा हृदय व्यथित हो जाता है कि जादवों के उस सुधर्मा सभा में, जहां जादवपति उग्रसेन जी राज सिंहासन पर विराजमान थे, बैठते थे, तो श्री कृष्ण जब उस सभा में प्रवेश करते तो सबसे पहले उग्रसेन जी के पास जाकर प्रणाम करते, उनके चरण रखने की चौकी पर सिर रखकर नमस्कार करते और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते। खड़ा होकर कहते कि हे नाथ, हे जादव पति, कृपा करके हमारी बात सुनिए। तो उग्रसेन जी यदि कहें कि हाँ बोलिए, तो हे प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए आपकी क्या विशेष आज्ञा है। यह दृश्य सभी लोग देखते थे, सब लोग, रोज का एक काम था। उस सभा में उद्धव जी भी देख रहे थे इस दृश्य को। तो उग्रसेन जी कहते ठीक है आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। तो यह दृश्य उद्धव के हृदय में विशेष रूप से स्मरण हो रहा है और उस स्मरण के कारण इनका हृदय व्यथित है, दुखित है। इस बात के लिए कि श्री कृष्ण असाधारण व्यक्तित्व हैं, असाधारण पुरुष हैं, सर्वाध्यक्ष, सर्वाराध्य, स्वयं भगवान हैं, बड़े बड़े देवताओं के जो आराध्य हैं, शिव ब्रह्मा जिनकी आराधना करते हैं, देवर्षि नारद जिनके निरंतर कीर्तन करते रहते हैं, समस्त सौभाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जिनके चरणों का संवाहन करती हैं, वह श्री भगवान उग्रसेन के कैंकर कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो यह व्यवहार श्री कृष्ण का विशेष रूप से भक्तों के हृदय को व्यथित करता है, क्योंकि केवल उग्रसेन की बात नहीं है, जितने भी कृष्ण समर्पित भक्त हैं जो कृष्ण का भजन करते हैं उनके प्रति कृष्ण का यही व्यवहार होता है। भक्तों की नौकरी करने में कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। आप जानते हैं कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है पार्थ सारथी, अर्जुन के रथ चलाने वाले। तो रथ चलाने का अर्थ यह नहीं केवल रथ घोड़े का लगाम पकड़े और बस हाँक रहे हैं, पूरा पूरा अर्जुन के नौकर, रथ लाकर खड़ा करना और अर्जुन को पकड़ करके टांग करके रथ पर चढ़ाना, उतारते समय उनको पकड़ कर उतारना, और युद्ध स्थल में जो घोड़े घायल हो जाते थे प्रतिद्वंदी शत्रुओं का बाढ़ घोड़ों के पैर में, पेट में या कहीं लगा होता, तो शाम को उनका मलहम पट्टी करते, उनको विशेष रूप से सेंक करते, दवाई लगाते, ऐसी ये सब करते थे, उनको खिलाते पिलाते, घोड़ों को पूर्ण रूप से स्वस्थ करते, या कोई बहुत ज्यादा घायल घोड़ा है तो उसको विशेष चिकित्सा का ध्यान देते, और युद्ध करते करते जब अर्जुन थक जाते उनके भुजाओं में बहुत पीड़ा अनुभव होने लगती तो अर्जुन की भी सेवा करते, मसाज भी करते थे। और युद्ध स्थल में लगातार बाण चलाने में अर्जुन बोल नहीं पाते थे, जैसे भीष्म कर्ण सामने आ गए तो दो अतिरथियों के सामने तो अर्जुन को बोलने का तो अवकाश ही नहीं मिलता, इतना तीव्र गति से वो लोग बाण चलाते हैं, अर्जुन अपने गांडीव से उन बाणों को काटते रहते हैं। तो कभी कभी इच्छा होती कि थोड़ा सा साइड में, बाएं, दाएं, आगे, पीछे, कुछ कहना पड़ेगा ना, रथ को थोड़ा बाएं ले चलो, दाएं ले चलो, आगे बढ़ो, पीछे थोड़ा हटो, कुछ कहना होता था। तो इसके लिए एक संकेत था अद्भुत, कृष्ण सारथी के रूप में नीचे बैठे रहते थे और अर्जुन पीछे, थोड़ा अर्जुन के खड़ा होने का स्थान ऊंचा था, तो अर्जुन को जब इशारा करना होता तो अपने दाहिने पैर से कृष्ण के दाहिने कान का टच करते, दाहिने तरफ चलो, और बाएं पैर से बाएं कान को छूते थे, तो कृष्ण समझते बाएं चलना है, आगे बढ़ना है तो अपना पैर कृष्ण के सिर पर रख देते, आगे चलना है, पीछे हटने के लिए पीछे यहाँ पीठ के तरफ पैर रखते। यह संकेत था और इस सब को श्री कृष्ण बड़ी आसानी से खुशी से सह रहे थे, सह नहीं रहे थे, उनको आनंद आ रहा था इस तरह सेवकाई करने में। और अर्जुन के उतरने से पहले रथ से कूद करके अर्जुन को पकड़ कर उतारते। इस प्रकार पार्थसारथी, पार्थ सेवक नाम बड़ा प्रसिद्ध है कृष्ण का, इसमें वो प्रसन्न रहते थे। तो कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण में अपना चित लगाता है, भजन करता है, तो कृष्ण उसके सेवक हो जाते हैं। यह है कृष्ण की भक्त वात्सल्यता। तो कृष्ण के भक्त वात्सल्य गुण को उद्धव जी विशेष रूप से स्मरण कर रहे हैं। जो लोग भजन करते हैं अनुकूल भाव से, अनन्य भाव से कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी सेवकाई तो करते ही हैं। इसके विपरीत जो कृष्ण के साथ शत्रुता के भाव से पेश आते हैं, शत्रु भाव से कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, या कृष्ण को जान से मारने के नियत बनाकर आते हैं, उनके प्रति कृष्ण का क्या व्यवहार है, इसको स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति कहीं होगा ही नहीं दुनिया में, खोजने पर कहीं भी नहीं है। किसी भी इतिहास के पन्नों को उलाट उलाट कर पढ़ जाओ, लेकिन कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कृष्ण जैसा। मित्र से तो मित्रता सभी लोग करते हैं, अपने बेटा बेटी से सभी बाप प्रेम करते हैं, अपने पत्नी से अपने पति से सभी लोग प्रेम करते हैं, अपने मित्र से सभी प्रेम करते हैं, अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, जाति से सभी का प्रेम है स्वाभाविक। लेकिन अपने शत्रु से भी प्रेम और उसी लेवल का प्रेम, यह तो इतिहास में केवल अकेला उदाहरण है श्री कृष्ण का। तो कहते हैं देखिए एक और घटना याद आ रही है अद्भुत। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया पाय जदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यह व्यवहार बाद में नहीं उभरा, कृष्ण के स्वरूप में, नेचर में ही व्यवहार है। शत्रुओं के साथ भी समान रूप से व्यवहार करना, अवतार के आरंभ से ही परापकारियों पर भी कृपा माधुर्य का स्मरण करके उद्धव विलाप कर रहे हैं। अवतार लिए अभी केवल 6 दिन हुआ था, केवल 6 दिन। अहो असाध्वी बकी अपि जिघांसया स्तन कालकूटम यम अपायत धात्री उचितम गतिम लेभे। अहो कितने आश्चर्य की बात है, दुष्टा पुतना भी जो हत्या करने के नियत से अपने अस्तन में हलाहल विष लगा करके आई थी कि कृष्ण को पिला करके उसको मार डालूंगी, और उस अस्तन को दे करके पुतना क्या प्राप्त की बदले में, माता जसोदा की तरह धात्री गति प्राप्त की गोलोक में, मां के साथ सेवा करने वाली दासी की गति प्राप्त की। बड़े बड़े राजाओं के यहां एक धात्री होती हैं जो अंतःपुर में रानी के साथ रहती हैं, धात्री दासी होती हैं। तो धात्री उस दासी को कहते हैं जो रानी जी के साथ रहती हैं, और रानी की सेवा तो करती हैं, मुख्य रूप से रानी के बच्चों की सेवा करती हैं, उनको खिलाना पिलाना, स्नान करना, दूध पिलाना, सुलाना, सब कुछ वही करती है। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, तो जैसे अपनी माँ रानी को माँ कहते हैं, वैसे उस दासी को भी मम्मी कहते हैं। माँ की ही भावना बनी रहती है उनकी, बड़े होने के बाद, सयाने होने के बाद भी उसके प्रति उनकी माँ की ही भावना होती है उस राजकुमार का। तो क्योंकि वो माँ के बदले में सारी सेवा करती है। एक तरह से रानी जी तो केवल जन्म दी है, सेवा तो दासी ही करती है पूरा, इसलिए बच्चे का बहुत स्नेह होता है उस दासी के प्रति, प्रेम होता है, दासी का भी प्रेम होता है। तो उसको धात्री कहते हैं, धात्री माँ, माँ के बदले में माँ, माँ की बराबर की, तो पुतना को अस्तन पान करके भगवान गोलोक भेज दिए, माँ यशोदा के साथ रहने वाली दासी की गति दिए, धात्री गति दिए। और यह गति असाधारण गति है, इसके बराबरी कुछ भी नहीं हो सकता है। बड़े बड़े जति, बड़े बड़े साधु सन्यासी तपस्या कर करके जन्म जन्मांतर बिता देते हैं, लेकिन इस तरह का गति बड़ी आसानी से नहीं प्राप्त होती। ऐसे गति को श्री कृष्ण बड़ी आसानी से पुतना को दे दिए। तो फिर कहते हैं, तत्वा अन्यम कम दयालुम शरणम ब्रजेम, उन श्री कृष्ण के अलावा अन्य कौन ऐसा दयालु है जिसकी शरण लूं, अर्थात ऐसा दयालु कोई नहीं है, कौन है? कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, कोई है क्या, कोई और उदाहरण है कि विष देने वाले को इतना बड़ा इनाम दे कि गोलोक दे दे, अपना धाम दे दे और माता यशोदा की गति दे दे, ऐसा कोई नहीं है। आश्चर्य में बोल रहे हैं, पहला शब्द अहो, आश्चर्य में, अहो बकीयम, बकीयम पुतना का नाम है, बकी बक्कासुर की बहन, बक बक्की भाई बहन थे, बक एक असुर था और बकी उसकी बहन थी, तो बक असुर को बक्कासुर कहा गया और बकी थी पुतना, और इसका एक और भाई था अघासुर, अघासुर बक्कासुर और ये बकी पुतना, ये तीनों भाई बहन थे। तीनों कृष्ण के हाथ से मारे गए, तीनों को वैकुंठ मिला, पुतना को तो मातृ गति मिल गई। तो इस प्रकार द्वेषियों को मुक्ति देने का कार्य कोई भी भगवत स्वरूप गण कर सकते हैं। भगवान के किसी भी स्वरूप के द्वारा किसी असुरों का वध होता है, चाहे विष्णु स्वरूप हो, राम स्वरूप या वराह स्वरूप, किसी स्वरूप से अगर भगवान मारते हैं तो उनकी गति तो होती ही है, उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन प्रेम दान करने वाला तो केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही काम है, मुक्ति दूसरी चीज है। संसार के दुखों से मुक्त होकर सुखमय स्थान की प्राप्ति कर लेना ये मुक्ति है, लेकिन माधुर्यमय प्रेममय व्यवहार हो जाना, कृष्ण के साथ एक नाता हो जाना, कृष्ण मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा भाई है, कृष्ण मेरा मित्र है या प्रियतम है, यह जो भाव है इसको प्रेम कहते हैं। प्रेम का संबंध जो परिवार में होता है, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पुत्री से, ये प्रेम व्यवहार है। इस तरह का प्रेम व्यवहार तो केवल कृष्ण के साथ है। पापिनी पुतना को भी गोलोक में नित्य दूध पिलाने वाली उपमाता धाय की गति दे देना, यह श्री कृष्ण की अद्वितीय कृपा का प्रमाण है। ऐसी कृपा अन्य किसी अवतार में नहीं देखी गई, अद्भुत कृपा। किसी भी अवतार में भगवान इस प्रकार माता नहीं बना दिए किसी को। तारका को भगवान मारे तो क्या माता बना दिए श्री राम के रूप में? माता नहीं बनाए, माता की स्थान तो केवल कृष्ण दिए पुतना को। वास्तव में भगवान का एक चरित्र अद्भुत है और सुनने लायक है। अगर कोई व्यक्ति ठीक ढंग से कृष्ण के चरित्र को सुन ले तो उनके प्रति वो निश्चित रूप से आसक्त हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चैतामृत में सनातन गोस्वामी से, बंगला में एक ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत, उसमें कहते हैं, विज्ञ जनेर होय यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। विज्ञ जनेर होय यदि कृष्ण गुण ज्ञान, विज्ञ मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति को अगर कृष्ण के गुणों की जानकारी हो जाए, ठीक ठीक से कृष्ण के विषय में सुन ले, तो सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण, सब कुछ छोड़कर वो कृष्ण का भजन करेगा, सब छोड़ देगा, सारा काम धंधा केवल कृष्ण का भजन करेगा। अन्य तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, अन्य तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। अन्य तजी माने जितने आराधना करने के आराध्य लोग हैं, लोग कामनाओं से ग्रस्त होकर देवी देवता तांत्रिक मांत्रिक से के फेरे में पड़ जाते हैं, तो सबको छोड़कर कृष्ण का भजन करेंगे यदि कृष्ण के गुणों की जानकारी हो जाए तो। भगवान की विशेष विशेषता को सुनना चाहिए, सुनने से कृष्ण के विषय में जानकारी होती है और पता चलता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं है। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, अगर कोई पुतना की कथा को सुन ले, किसी भी तरह कृष्ण के शरण में आने वाले, चाहे वो दुश्मन के भाव से आवे, मित्र के भाव से आवे, किसी भी तरह आवे, कृष्ण उनका सम्मान करते हैं, उनको अपना प्रेम प्रदान करते हैं। यह कथा अगर कोई सुन ले तो निश्चित रूप से कृष्ण का भजन करेगा। मुख्य रूप से श्री कृष्ण का चरित्र और श्री राम चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक है, लोक हितकारी है। भगवान श्री राम के चरित्र का निरूपण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अद्भुत स्वामी है श्री राम, ऐसा कोई बोस नहीं देखा, ऐसा कोई स्वामी नहीं देखा। उदाहरण देते हुए कहते हैं, देखिए हमारे प्रभु श्री राम पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनके सेवक पेड़ के ऊपर बंदर। प्रभु तरुतर कपिडार पर तेही के आप समान, तुलसी न कहूं राम सो साहिब शील निधान। ऐसा साहिब शील निधान साहब कहीं नहीं मिलेगा। स्वामी पेड़ के नीचे बैठा है और उनके सेवक बंदर पेड़ के ऊपर। अगर किसी बोस के कुर्सी पर कोई नौकर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, नौकरी तो दूर की बात है, सजा भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे स्वामी श्री राम है कि अपने सेवकों को ऊपर पेड़ पर चढ़ते घूमते हुए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपने समान प्रेम करते हैं। ये है भगवान का स्वभाव। तो भगवत स्वरूप की जानकारी बहुत जरूरी है। भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो सुनाते हुए कहते हैं कि हे उमा, अगर भगवान के चरित्र को ठीक से सुन लिया जाए तो केवल भजन व्यक्ति करेगा और कुछ में मन ही नहीं लगेगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। हे उमा, राम के स्वभाव को जो व्यक्ति ठीक से सुन लेता है, जान जाता है, तो उसको भजन छोड़कर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। केवल भजन करने का उपाय है खूब बढ़िया से कृष्ण के विषय में, राम के विषय में सुनना। जब तक सुनेगा नहीं तब तक जानेगा नहीं, जब तक जानेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं, और मान नहीं लेगा तब तक वो भजन नहीं करेगा। उसके मन में विविध प्रकार के कचड़ा भरे हैं, ये देवता अच्छा है, वो देवी अच्छा है, ये तांत्रिक अच्छा है, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए, इस फेरे में बेचारा कामनाओं से ग्रसित होकर भिन्न भिन्न फॉर्मालिटी में पड़ा हुआ है। तो वो सारा फॉर्मालिटी छोड़कर ओरिजिनलिटी में आ जाएगा, भजन करने लगेगा। उसके मन में जो विविध प्रकार के उहापोह है वो सब खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि कोई नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है। कोई अच्छा व्यक्ति कहीं से भी गुण ग्रहण करता है, कहीं से भी, कुछ उसका 1% भी गुण दिखे तो उसी को स्वीकार करता है। 1% स्नेहिल माता का स्वांग भर करने वाली पुतना को कृष्ण अपना अस्तन पीने को दिया। स्नेहिल माता का स्वांग भर करके पुतना कृष्ण को अपना अस्तन पीने को दी। उसके अंदर स्नेह था नहीं, स्नेह का नाटक भर की, और ऐसा नाटक की कि एकदम भगवान प्रसन्न हो गए। जो भागवत में वर्णन है दशम स्कंद के 6वें अध्याय में, बहुत सुंदर ढंग से वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि जब पुतना गोकुल में आई तो इतना सुंदर रूप बनाई थी एकदम लक्ष्मी की तरह, हाथ में कमल का फूल ली थी, कमल का फूल घुमाते हुए बड़े मस्ती से गोकुल में प्रवेश की, एकदम सुंदर रूप। गोकुल की स्त्रियां ऐसी सुंदरी स्त्री देखी ही नहीं थी, सब दौड़कर आ गई देखने के लिए, भीड़ मच गया, चारों तरफ लोग देख रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रही है, मंद मंद मुस्कुराते हुए, हाथ में कमल का फूल हिलाते हुए गलियों में चल रही है, लोग बिना पूछे रास्ता बता रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि ये नंदलाला का दर्शन करने आई है। अभी 5 दिन पहले नंद बाबा को बेटा हुआ है, सभी लोग बधाई देने आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, देवता लोग आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तो ये कोई देवी होगी, हो सकता है लक्ष्मी देवी आ रही है नंद भवन में नंद लाला को देखने, तो बिना पूछे रास्ता बता रहे हैं, ये यह रास्ता नंद भवन में जाएगा, और पीछे पीछे चल रहे हैं सब लोग, खास करके स्त्रियां चल रही हैं, और वो पुतना निर्भीक निश्चिंत रूप से जब नंद भवन में प्रवेश की, प्रवेश करते ही कही, अरे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, कहते हुए जब घर में प्रवेश की तो जसोदा और रोहिणी भी हतप्रभ हो गई। वो भी सोचने लगी इस स्त्री में कितना स्नेह है, अरे लाला कहाँ है, तो बेड पर आंख बंद किया हुआ लाला पड़ा हुआ था, उसको उठा ली गोद में, चुमने लगी, अरे मेरे लाला, इतना स्नेह से चुमने लगी कि माता जसोदा और रोहिणी मना करने की तो बात छोड़ दीजिए, मन में सोचने लगी कि वास्तव में इस स्त्री के अंदर जो स्नेह है, बच्चे के प्रति ममता है, वो तो हमारे अंदर है ही नहीं, वास्तव में इसी को इस बच्चे की माँ होने का अधिकार होना चाहिए था। इतना रोहिणी जी और जसोदा के मन में आने लगा, और वो तो नियत उसका था, कपट था कि गोद में लूंगी और अपना हलाहल लगा हुआ अस्तन पकड़वाऊंगी, या जो ही अस्तन को अपने मुंह से टच करेगा बस मर जाएगा, और तुरंत अपनी कंचुकी से अस्तन निकाली और बच्चे के मुंह में पकड़वा दी, और प्रेम से कृष्ण उस अस्तन को पकड़ लिए दोनों हाथों से और ओठों से पीने लगे, और जब पीने लगे अस्तन तो उस अस्तन के विष युक्त दूध को तो पिए ही, साथ ही पुतना के प्राण भी पीने लगे, और लगी छटपटाने, दर्द होने लगा, कष्ट होने लगा, छोड़ दे हटा रही है, लेकिन वो छोड़ना तो जानते नहीं, उनका आदत ही नहीं, जिसको एक बात पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है, अब छटपटा रही, एकदम उसी आंगन में नंद भवन में ही विशाल शरीर बढ़ा ली और आकाश में लेकर उड़ गई। जसोदा रोहिणी और गोपियां तो चकित हो गई देखकर, बाप रे राक्षसी थी, और री लाला को लेकर उड़ गई, सब लोग बेहोश हो गए, रोते रोते छटपटाने लगे, और वो पुतना लेकर आकाश में चली गई। भगवान को बस उसका यही व्यवहार, न्यूनतम योग्यता, माता का स्वांग भर करने का जो नाटक की थी, वो दिखावा की थी, उस दिखावा पर भगवान प्रसन्न हो गए। चाहे कुछ भी हो लेकिन ड्रामा फर्स्ट क्लास हुआ, माँ का जो व्यवहार प्रकट की वो फर्स्ट क्लास हुआ, तो इसके बदले में उस ड्रामा का पुरस्कार क्या होना चाहिए, तो कहे इसका पुरस्कार कुछ दूसरा नहीं, इसको वास्तव में माता का अधिकार मिलना चाहिए। ये बेचारी अपनी नियत से अपने बुद्धि से जो भी की, लेकिन की बहुत फर्स्ट क्लास, इसलिए भगवान उसको गोलोक में परमानेंट माँ बना दिए, माँ जसोदा के साथ धात्री गति पुरस्कार प्रदान किए, सबसे बड़ा पुरस्कार। अतएव भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई परम शरण नहीं हो सकता, किसी भी भाव से उनके शरण में आए उसको भगवान आश्रय देते हैं, सुख प्रदान करते हैं, यह भगवान की विशेष विशेषता है। तो उस आसुरी पुतना के सदगति पर विचार करते हुए आगे फिर उद्धव जी कहते हैं कि वास्तव में हम लोग जीवन भर भजन किए, साथ रहे, बातचीत किए, साथ में खाए, सोए, उनका छोड़ा हुआ वस्त्र पहने, उनकी छोड़ी हुई माला पहने, साथ साथ में रहे, लेकिन वास्तव में हम लोगों से बढ़कर तो असुर महाभागवत है, वे लोग भागवत हैं, भक्त हैं भगवान के, जिनके जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन मिलता है। और मेरा दे दुर्भाग्य कि हाय हाय साथ जीवन भर रहने के बाद भी जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन नहीं हो पाएगा, अपने को असुरों से भी हीन मानते हुए और असुरों को भागवत पुरुष मानते हुए, भागवत मतलब भगवान का प्रेमी भक्त, तब उद्धव बोलते हैं मन ने सुरान भागवतांत्रधीशे संग्रभ मार्गाभिनिविष्ट चेतन ये संजुगे क्षत तार्ष पुत्र अंशे सुनामा युधमा पतंतम अंशे सुनाभा युधमा पतंतम मन ने सुरान भागवतांस्तधीशे संग्रभ मार्गाभिनिविष्ट चेतन ये संजुगे क्षत तार्ष पुत्र मन से सुनाभा युधमा पतंतम। उद्धव जी आगे कहते हैं कि ये श्री भगवान त्रधीशे सरब्ध मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, ऐसे त्रिलोकी के ईश्वर त्रिलोकेश्वर श्री भगवान में क्रोध के मार्ग से जिनका चित आविष्ट रहता है उन असुरान एवं अहम भागवतान मनने, उन असुरों को मैं भागवत मानता हूं, भगवान का सच्चा भक्त मानता हूं, जो दिन रात कृष्ण से क्रोध करते हैं, कृष्ण को गाली देते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन कृष्ण का निरंतर चिंतन करते हैं, जैसे कंस रावण हिरण्यकश्यपु ये लोग वास्तव में हमसे बढ़कर हैं, वे असुर हमसे बढ़कर हैं। क्यों बढ़कर हैं? क्योंकि निरंतर जिनका चित कृष्ण में आविष्ट रहता है, भले क्रोध के कारण वैर के कारण, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है। हिरण्यकश्यपु निरंतर भगवान का स्मरण करता था, कंस निरंतर भगवान का स्मरण करता था। जब से सुना आकाशवाणी कि विष्णु के हाथ से मारा जाएगा और देवकी का पुत्र बनकर आएगा, तो विष्णु का स्वरूप क्या है? पीताम्बर धारण करता है, गदा शंख चक्र लिया रहता है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, तो हमेशा जहां भी कोई लाइट दिखता तो सोचता वही आ गया पीताम्बर धारी, कुछ दिखता तो समझता था कृष्ण आ गया। हर समय सोते समय जागते समय खाते समय चलते समय उठते समय बैठते समय निरंतर कृष्ण का याद करता था, और याद करने का कोई अनुकूल भावनाएं नहीं थी, क्रोध से क्रोध निरंतर, मिलते ही उसको मारूंगा, समाप्त कर दूंगा, काट दूंगा, क्रोध मार्ग से जिनका चित्त आविष्ट रहता था और उससे कृष्ण के हृदय में घुसे रहते थे, उन असुरों को मैं सच्चा भगवत भक्त मानता हूं। मन्ने सुरान भागवतान त्रधीशे संग्रभ मार्गाभिनिविष्ट चित्तान, जिनके चित्त में भगवान छाए रहते थे। और एक विशेष बात इसके अतिरिक्त, जे संजुगे अंशे सुनाम आयुधम आपतंतम ताक्ष पुत्रम अचक्षत, ते जो संग्राम में युद्ध करते समय कृष्ण से लड़ते समय उनका चित्तवृत्ति किस प्रकार होती थी, इसको कह रहे हैं कि जो संग्राम में कंधे पर चक्रधर को लिए हुए आक्रमणकारी कश्यप पुत्र गरुड़ को देखते रहते थे, युद्ध करते 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 कभी कभी उनके मन में आता असुरों के कि अभी कृष्ण आएगा, अभी विष्णु आएंगे, गरुड़ पर चढ़कर गरुड़ के कंधे पर हाथ में चक्र लेकर, कई घटनाएं ऐसी हो गई थी इसलिए उन लोगों को भय बना रहता था कि गरुड़ पर चढ़कर आएगा चक्र लेकर और हमारा सिर काट डालेगा, इस बात से निरंतर स्मरण करते थे। और उस समय लड़ते समय कभी कभी उनको ये सौभाग्य मिल ही जाता कि श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़े हुए आ जाते, गरुड़ पर चढ़े हुए कृष्ण को देखकर एकदम चित्त आविष्ट हो जाता था, उनके में ही मन लग जाता है उन असुरों को। पहले से ही लगा हुआ था लेकिन देखते रहते थे और इस प्रकार श्री कृष्ण के आयुध से, धनुष से, कभी गदा से अथवा चक्र से जब मारे जाते थे तो निरंतर कृष्ण का स्मरण करने के कारण उनको सीधे भगवत धाम मिलता था। तो इस प्रकार ये विचित्र स्मरण कर रहे हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं वो असुर लोग। तो ऐसे सिद्धांत तो यही है कि भगवान भजन करने वाले भक्तों को स्वीकार करते हैं, अपना धाम देते हैं, जो भजन करता है उनको धाम देते हैं, यह प्रसिद्ध बात है। ननु भागवतान एव भगवान अनुग्रहणीति प्रसिद्धम, यह प्रसिद्ध बात है कि जो अनुकूल भाव से भजन करता है उसको भगवान ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, सत्यम, यह सत्य है। किन असुरान अपि अहम भागवतान एव मन्ने, इन असुरों को मैं भगवत भक्त मानता हूं, सच्चा भक्त मानता हूं। जतो भागवता इव तेपि भगवत ध्याना भिनिवेशेन भगवंतम अपरोक्षम पश्यन्ति त्याह, भले वो डायरेक्ट भगवान की अर्चा विग्रह स्थापित करके आरती नहीं उतारते हैं, दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उनका चित भगवान में लगा रहता है, वो देखते रहते हैं। उनके देखने का ढंग दूसरा होता है, शरंभ क्रोधावेशस्तेन मार्गेणा अविनिविष्टम चित्तम जैसम तान, वे क्रोध के मार्ग से कृष्ण का स्मरण करते हैं, अनुकूल कृष्ण भावना भावित नहीं है। तस्मात् तेषु अपि अनुग्रहो युक्त एव इत्यर्थ, ऐसा वक्षति च, इस प्रकार कहा गया है। एक प्रसिद्ध युक्ति है कि तस्मात् केन उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत इति, किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में लगाना चाहिए, यह उद्धव जी का उद्गार है। मन ने कहकर उद्धव जी विलाप कर रहे हैं, इनका विलाप ध्वनित हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत है कि असुर भगवान के भक्तों से बढ़ गए, लेकिन अंतिम समय में भगवत साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति के कारण पर विचार करके अंत भला तो सब भला, इस उक्ति के अनुसार असुरों को भगवत मान रहे हैं कि जीवन भर चाहे कुछ भी किए, दुष्टता किए, पाप किए, अत्याचार किए, अधर्म का पालन किए, लेकिन जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन करते हुए शरीर छोड़े, कृष्ण में चित लगा दिए, तो इस कारण से उनको भागवत मान रहे हैं, अंत भला तो सब भला। और अंत में कृष्ण वियोग में दग्ध होने के कारण अपने को असुर मान रहे हैं, कृष्ण की सानिध्य प्राप्ति की लालसा से छटपटाते हुए उद्धव का यह केवल विलाप मात्र है, विलाप कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि हाय हाय, असुरों को जो अवसर प्राप्त हुआ वो अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा, हमको मारने के लिए भी नहीं आएंगे क्योंकि हम भक्त हैं, और अब जब चले गए अपने लोक में तो फिर आएंगे नहीं, जब भी हमको शरीर छोड़ना पड़ेगा तो कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। तो ये हमसे तो श्रेष्ठ वो असुर हैं जो अपने जीवन के अंत में कृष्ण का दर्शन करते हैं, इस तरह से विलाप कर रहे हैं। तो उद्धव भगवान के गुणों का विशेष रूप से स्मरण करते हुए रो रहे हैं, और उसी क्रम में रोते हुए अब विदुर के प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा, और विदुर का प्रश्न ऐसा है कि उसमें कृष्ण के अंतर्धान का वर्णन करना पड़ेगा। कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने नित्य धाम चले गए, ये तो कहना पड़ेगा, बिना इसको कहे तो उत्तर पूरा होने वाला है नहीं। और जिन जिन संबंधियों का नाम रखे हैं, खासकर द्वारिका के, वे सभी नहीं हैं, तो इसको कहने के लिए मौसल लीला कहना पड़ेगा, जो प्रभास क्षेत्र में ब्राह्मणों के श्राप से जो मूसल निकला था और एरका घास होकर जो जादवों के विनाश का कारण हुआ था वो सब कहना पड़ेगा। यह सोचकर उस दुखमय लीला को कहने से पहले उद्धव सुखमय लीलाओं का स्मरण करने जा रहे हैं। अब उद्धव के मन में आ रहा है कि जब वो दुखद घटना कहना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है, तो क्यों न शुरू से कृष्ण के समस्त लीलाओं पर विचार किया जाए और उसी क्रम में अंत में मौसल लीला भी कह देंगे। कोई भी अप्रिय घटना, बुरा सूचना तुरंत उत्सुकता में नहीं कहना चाहिए। जानते हैं कि इस सूचना को देने से व्यक्ति दुखी हो जाएगा, तो उसको अपने मुंह से कह कर क्यों दुखी करें? वो तो पता चल ही जाएगा धीरे धीरे। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कुछ अप्रिय घटना हो गया है, तो उसको बड़ी खुशी से नहीं कहा जाता है, फैलता है धीरे धीरे, कानाफूसी आ ही जाता है, लेकिन उत्साह नहीं होता है इन घटनाओं को कहने का, और कहना भी नहीं चाहिए बड़ी जल्दी से। तो अब उद्धव जी भगवान के अंतर्धान लीला को कहने के पहले भगवान के अवतार से लेकर समस्त लीलाओं पर विचार कर रहे हैं। अब यहां से प्रारंभ करेंगे आगे। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्य समजे नाभियाचितः। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेन्द्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्य समजे नाभियाचितः। अस्य समचिकीर्षु भगवान अजेन याचितः सन भोजेन्द्र बंधने वसुदेवस्य देवक्या जातः। इस पृथ्वी को सुख देने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थित होकर भोजराज कंस के कारागृह में वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। यहां से प्रारंभ करते हैं, कृष्ण के जन्म की कथा कहते हैं। अप्राकट कहने के पहले जन्म से संक्षेप में कृष्ण लीलाओं को कहना चाहते हैं। यह है उद्धव जी के स्टाइल। विशेष रूप से कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं तो वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। कहां पर प्राकट हुआ? भोजेन्द्र बंधने, भोजराज कंस के बंधनागार में, कारागृह में कृष्ण का अवतार हुआ। सभी लोग जानते हैं, उन्हीं कथाओं को उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं कि जब वसुदेव जी विवाह करके अपने घर के लिए लौट रहे थे तो अपने बहन बहनोई के सम्मान में कंस रथ का संचालन कर रहा था। देवकी देवक जी की पुत्री थी और कंस उग्रसेन जी के, तो उग्रसेन और देवक भाई थे आपस में, तो अपनी चचेरी बहन देवकी का सम्मान करने के लिए स्वयं कंस जो युवराज था, राजा था, महाराज उग्रसेन का पुत्र होने के कारण वो युवराज था और उसके पिताजी राजा थे उग्रसेन जी, तो अपनी बहन की विदाई में वो स्वयं रथ चलाने लगा। ऐसे स्वभाव से कंस बहुत उग्र प्रकृति के था, दुष्ट प्रकृति के था, और यह निश्चित था कि उसके पापों से पृथ्वी प्रभावित होगी, सज्जन लोग प्रभावित होंगे, पहले से ही सबको पता था, और जितना भी अपने जवानी में कुछ किया था उससे सज्जनों को बहुत कष्ट हुआ था। तो देवता लोग इस बात को जानते थे कि कंस दुष्ट है, अगर कहीं भगवान के माता पिता की सेवा किया तो परम कृतज्ञ श्री भगवान के मन में बातें न आ जाए कि ये हमारे माता पिता की सेवा किया है, और इस कृतज्ञता के कारण कंस का वध न करें अथवा वध करने में लेट कर दें तो ये और तंग करेगा सबको, इसलिए देवताओं ने उस सेवा के अवसर पर ही उसको सूचना दे दिए कि अरे मूर्ख कंस, जिस देव की वसुदेव की तू सेवा कर रहा है, रथ संचालन कर रहा है, इसी देवकी का आठवां संतान तुम्हारा वध करेगी। तो कंस जब उस अनाउंसमेंट को सुना आकाशवाणी को तो तत्काल निर्णय लिया कि इसी देवकी का आठवां संतान मेरा वध करेगा तो क्यों ना आज ही देवकी को मार दे। रही बांस न बाजी मसूरी, बांस से बांसुरी बनती है तो बांस के कोठ में ही आग लगा दो, देवकी को ही मार डालता हूं, ना देवकी रहेगी ना कोई पुत्र होगा। तुरंत अपना तलवार निकाला और देवकी का केस पकड़ लिया, तत्काल विवाह करके आ रहे थे वसुदेव जी, अपना दायित्व समझकर अपनी जिम्मेवारी समझकर कंस का हाथ पकड़ लिए, देवकी की रक्षा का प्रयास किए, बहुत सारी सैद्धांतिक बातों का जिक्र किए, प्रवचन किए, लेकिन कंस सुनने वाला नहीं था। वसुदेव जी कहे कि अरे भाई कंस, विचार तो करो जरा, तुम कितने ऊंच कोटि के व्यक्ति हो, कितने अच्छे परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, राजकुमार हो, और अपने सगे बहन की वध करोगे, सगी बहन का वध करोगे तो कैसा होगा, ये उचित है क्या? एक तो देवकी तुम्हारी बहन है, दूसरे स्त्री है, स्त्री के गलती करने पर भी वध नहीं किया जाता, हाथ भी नहीं उठाया जा सकता, तुम तो सिर काटने जा रहे हो, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये विवाह के मांगलिक बेला में जहां सहनाइयां बज रही हैं और मंगलमय गीत गाए जा रहे हैं, स्वस्ति वाचन हो रहा है, वहीं तुम इसका वध करने जा रहे हो। अभी तक इसके विवाह के जो मंगल वेशभूषा है, कंगन आदि है, वो भी नहीं खोला गया, इसका दोबारा श्रृंगार भी नहीं हुआ, और इस मांगलिक बेला में तुम अपनी बहन के वध करने जा रहे हो, इतना भारी अपजस लेकर कैसे जियोगे। और मुख्य बात है कंस कि जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो मरेगा, आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, यह नग्न सत्य है, किसी भी उपाय से कोई अपने को अमर नहीं कर सकता। और जहां तक मृत्यु की बात है, जब उसके कर्मों का रिजल्ट तैयार हो जाता है, अगला जीवन निश्चित हो जाता है, तभी व्यक्ति का शरीर छूटता है। तो मरने से अगर डर रहे हो तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, अगला जीवन मिलेगा, लेकिन वो अगला जीवन कर्म पर निर्धारित करता है, वो कैसा मिलेगा, जैसा तुम्हारी करनी है वैसा मिलेगा। शरीर की चिंता मत करो, शरीर तो मिलेगा, जैसे एक कुर्ता फटने पर दूसरा कुर्ता व्यक्ति पहन लेता है, वैसे दूसरा शरीर भी मिलेगा। तरह तरह के सैद्धांतिक बात समझाने की चेष्टा किए, लेकिन वो सुनने पर तैयार नहीं था। अंत में वसुदेव जी को कहना पड़ा, परम सत्यवादी वसुदेव जी थे, प्रसिद्ध थे समाज में, कंस भी जानता था कि झूठ नहीं बोल सकते, तो विवश अवस्था में वसुदेव को कहना पड़ा कि कंस, तुमको देवकी से तो कोई भय है नहीं, भय है इसके पुत्रों से? तो कहे हाँ, पुत्रों से भय है, तो मैं तुमको वचन देता हूं कि देवकी के उन पुत्रों को दे दूंगा जिससे तुमको भय नहीं है। ने ऐसे सुंदर ढंग से बोले जिसमें भयम उत्थित या अभय उत्थितम, एस जैसा अग्रह लगाने पर अभय उत्थितम, और पुत्रान कहकर बहुवचन में कहे कि मैं उन पुत्रों को दे दूंगा जिससे तुमको कोई भय नहीं हो, भीतर तो ये भाव था, लेकिन ऊपर से कहे कि मैं देवकी के पुत्रों को तुमको दे दूंगा, तुमको जो करना हो कर देना, मार देना, जीवित रखना है तुम्हारे हाथ में है, तुम चिंता मत करो। तो कंस विश्वास कर लिया, वो जानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोल रहे हैं, छोड़ दिया, लेकिन बाद में देवर्षि नारद के कुछ कहने पर या अपने दुष्ट मंत्रियों के बहकावे में आकर वो वसुदेव जी को अरेस्ट कर लिया। पता नहीं कुछ चीटिंग कर लेगा, क्या करेगा, इसको घर जेल में ही रखते हैं। प्रथम पुत्र होने पर जब वसुदेव जी लेकर आए तो कंस को दया आ गई, कहा कि अरे इससे मुझे कोई भय नहीं, इतना मासूम बच्चा, आप ले जाइए, मुझको आठवां दे दीजिएगा बस। और बाद में जब निर्णय लिया कि नहीं नहीं सबको मारना है, जेल में बंद कर दिया। तो इस प्रकार एक एक दो दो तीन चार गिनते हुए 6 पुत्रों का वध किया। और 7वां संतान के रूप में श्री बलराम आए, लेकिन भगवान की प्रेरणा से श्री बलराम को जोग माया ने रोहिणी के गर्भ में रख दिया। और 8वें संतान के रूप में श्री कृष्ण आए। तो श्री कृष्ण का जन्म के विषय में सबको पता है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी के अर्धरात्रि में श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। अपने माता पिता को 3 जन्मों की कथा सुनाते हुए पिताजी को संकेत किए कि हमें गोकुल में पहुंचा दीजिए। तो भगवान के प्रेरणा से वसुदेव जी उनको गोकुल में पहुंचाए। ये सब उनकी जन्म की कथा है। तो इस सुखमय लीलाओं का उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं। ततो नंद ब्रजमित पित्रा क्रंसाद विभ्यता एकादश समास्तत्र गुढ़ार्ची शबलो वसत। तो ततः कंसात विभिव्यता पित्रा नंद ब्रजम इतः तत्र एकादश समा गुढ़ार्ची शबल अवसत। इसके बाद मतलब जन्म के बाद कंस से भयभीत पिता वसुदेव जी के द्वारा नंद भवन में लाए गए। वहां ब्रज में 11 वर्ष तक अपना ऐश्वर्य छिपाकर श्री बलराम जी के साथ निवास किए। संक्षेप में कथाएं कह रहे हैं। ब्रज में निवास करते समय श्री कृष्ण ईश्वरीय तेज कंस आदि असुर प्रवृत्ति लोगों के द्वारा अलक्षित रहे, उसको गुढ़ार्ची कहा गया है। अथवा माधुर्य के उद्रेक से ऐश्वर्य ब्रज में दबा रहा, ये है। पिताजी भयभीत थे, माता देवकी बहुत भयभीत थी, क्योंकि 6 पुत्रों का कंस वध कर चुका था। तो स्वाभाविक भय बना हुआ था कि जब कंस को पता लगेगा तो इसको भी मार डालेगा। इस भय से वो लोग भयभीत थे, कांप रहे थे। तो श्री भगवान उनके मनोभाव को जानकर कह दिए कि ठीक है, गोकुल में पहुंचा दीजिए। ततः कंसात विभिव्यता पित्रा नंद ब्रजम इतः, पिताजी के भयभीत अवस्था को देखकर भगवान कह दिए कि ठीक है, नंदालय में पहुंचा दीजिए। तो नंद भवन में ला दिए। और वहां पर एकादश समा 11 वर्ष तक रहे। लेकिन एक विशेष बात कहते हैं, गुढ़ार्ची, अपने को छिपाकर, अपने ऐश्वर्य को छिपाकर, अपने तेज को छिपाकर रहे अकेले। तो कहते सबल अवसत बलराम के साथ, बल बलराम जी का नाम है, बलराम नाम है राम, रोहिणे रोहिणी कुमार, शंकरसण, ये गर्गाचार्य जी नाम रखे हैं बलराम जी का। तो बल और राम एक में मिलाकर बलराम कह देते हैं। ऐसे 4 नाम है, बल अलग है, राम अलग है, शंकरसण और रोहिणे रोहिणी कुमार। तो बलराम के साथ भगवान अपने आप को छिपा कर रहे। गुढ़ार्ची गुप्त तेजहा, श्रीपाद सिद्ध स्वामी लिखते हैं, अपने ऐश्वर्य अपने तेज को छिपा कर रहे। मतलब भगवान के रूप में अपने को व्यक्त नहीं करना चाहते थे। कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमय लीलाएं प्रकट हो जाती थी, लेकिन वो चाहते थे कि एक गोप बालक के रूप में ही रहे। गाय चराते थे, दिन दिन भर गायों के पीछे रहते थे, साधारण गोप बच्चों जैसा खेलते थे, खाते थे, एकदम चरवाहे जैसा रहते थे, तो अपने ऐश्वर्य को अपने भगवत्ता को छिपा कर रहते थे। कुछ भी ऐश्वर्य प्रधान लीलाएं हो जाती फिर भी ब्रजवासी लोग उनको भगवान नहीं मान पाते थे, तो अपने माधुर्य से अपने भक्तों के सामने ऐश्वर्य छिपाते थे और असुरों के सामने अपने तेज को छिपाते थे, ऐश्वर्य को। दोनों अर्थ है। पित्रा हेतुना इतो गतः, पिता के कारण वे कंस के कारागृह से गोकुल गए, क्योंकि माता पिता भयभीत थे। पित्रा का मतलब केवल वसुदेव नहीं, देवकी भी। देवकी तो और ज्यादा भयभीत थी, थर 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 कांप रही थी कि पता नहीं अब कंस को पता चलेगा तो तुरंत आएगा, इसलिए देवकी बहुत डर रही थी। तो अपने भयभीता माता को देखकर भगवान कहे कि पिताजी हमको नंद भवन में पहुंचा दीजिए, और वहां जसोदा के पास एक बेटी हुई है उसको लाकर कंस को दिखा दीजिए। कितना दिन तक रहे गोकुल में, ब्रज में? तो एकादश समा संवत्सरान व्याप्यावसत 11 साल रहे। तावत तैव कालेन बाल्य पौगंड कैशोर लीला संपूर्ते गुढ़ार्ची प्राकृत ही कंसादिभिर अलक्षित तत्व माधुर्य देखेण गुढ़ैश्वर्य इतिवा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तावत एव कालेन, उस 11 वर्ष के अंदर ही श्री कृष्ण ने अपनी 3 अवस्था की लीलाओं को संपादन किया। बाल्य जिसको कुमार लीला कहते हैं, पौगंड कहते हैं 5 वर्ष लेकर 10 वर्ष के लीला को, जन्म से लेकर 5 वर्ष के लीला को बाल्य लीला कुमार लीला कहते हैं, और 5 से 10 वर्ष के बीच के लीला को पौगंड लीला कहते हैं, और 10 वर्ष के बाद भगवान 129 वर्ष पृथ्वी पर है, सब किशोर लीला है, बूढ़ा नहीं होते हैं। भगवान के भाग्य में बुढ़ापा नहीं है, उनको बुढ़ापा का मुंह असर नहीं हुआ, हमेशा 14-15 वर्ष के किशोर अवस्था के रहते हैं। तो 11 वर्ष रहे, मतलब किशोर अवस्था ऐसे तो देखने में 1 वर्ष ही रहा, लेकिन श्री भगवान जब 7 वर्ष के थे तभी किशोर अवस्था के 15-16 वर्ष जैसे दिखते थे, एकदम किशोर अवस्था के। तो इस प्रकार ब्रज में निवास करते समय श्री कृष्ण का ईश्वरीय तेज कंसादि असुरों के सामने छिपा हुआ था, और इसलिए गुढ़ार्ची कह रहे हैं। अथवा ब्रजवासियों के प्रति अपने माधुर्य की अभिव्यक्ति किए, इसके कारण ब्रजवासी कभी समझ नहीं पाए कि ये भगवान है, हमेशा अपना बेटा अपना संबंधी मानते थे। परितो वत्स पै वत्सान चारयन व्यवहारत विभु जमुनोपवने कुंजद द्विज संकुलितां घृपे। परितो वत्सपै वत्सम चारयन व्यवहारत विभु जमुनो पवने कुंजद द्विज संकुलितां घृपे। विभु सर्व समर्थ अनंत मधुर श्री कृष्ण वत्सपै परितः वत्सन चारयन, गो वत्स पालक बच्चों के साथ, गोप बालकों के साथ बछड़ों को चराते हुए, कुजद द्विज संकुलित अंग्रिपे जमुनो पौने व्यवहारत, विविध कलरव करते हुए पक्षियों से व्याप्त वृक्षों से सुशोभित जमुना के तटवर्ती वनों में विहार करते रहे। अब भगवान के बाल लीला का वर्णन कर रहे हैं, जन्म की कथा कह दिए, तो जन्म के बाद जब ब्रज में चले गए गोकुल में, तो गोकुल में क्या किए, तो गोकुल का वर्णन कर रहे हैं कि नंद बाबा वैश्य थे, लाखों गाय पाले थे, भगवान उनके बालक के रूप में आए, इसलिए उन्हें अन्य ग्वाल मित्रों के साथ बछड़ों को चराने का कार्य सौंप दिया गया। थोड़ा बड़ा हुए 2.5-3 साल के तो बछड़ा चराने लगे, माता जसोदा माता रोहिणी अपने बच्चों को खिला पिला कर आठ बजे सात बजे जब तैयार करती थी तो कुछ खेलने के बहाने से बछड़े लेकर निकलते थे, एकदम गांव के निकट ही, बहुत दूर नहीं। ब्रेकफास्ट के बाद उनको छूट दिया जाता था बछड़ा चराने का, तो बछड़ा तो छोड़ देते, पूरा चरागाह में बछड़े आनंद से चरते और बच्चे खूब कबड्डी कुश्ती खूब खेलते थे। और जमुना के किनारे खास करके वृक्षावलियों से अलंकृत जमुना तट बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत अच्छे थे। जमुना के किनारे बहुत से वृक्ष थे, सुंदर वृक्ष, कहते हैं अंघ्रिपे कुज्जत द्विज संकुलित अंघ्रिपे जमुनो पौने व्यवहारत, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे, आम कटहल सेव अमरूद नारंगी अंगूर बेर ताड़ आदि के पेड़ थे, और अन्य कई सुगंधित पुष्प भी भरे हुए थे, बहुत सुंदर फूल वाले वृक्ष भी थे, बेला जुहू जूही चंपा आदि पुष्प थे, कदम वृक्ष उसमें बहुत सुगंधित पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, और सब जमुना के किनारे थे। स्वाभाविक उन वृक्षों पर पक्षी निवास करते थे, और सरोवरों के अंदर जमुना के अंदर कुछ जलचर पक्षी बत्तख सारस और उन वनों में मोर ये सब चहकते रहते थे, कोयल पपी है, ये सारे वृक्ष पक्षी और पशु पवित्र प्राणी थे जो वृंदावन दिव्य धाम में भगवान एवं उनके साथियों को आनंदित करते रहते थे। वास्तव में ये सब नित्य भगवत परिकर हैं जो वृंदावन के इस सौंदर्य को बढ़ाते हुए कृष्ण को सुख दे रहे हैं, कृष्ण का सुख विधान कर रहे हैं। तो उस समय गोवत्सप अवस्था में यानी बछड़ों के चरवाहे के रूप में श्री कृष्ण ने तीन असुरों का वध किया। आगे पुतना के बाद वहां वृंदावन में जब बछड़े चराने लगे तब असुरों के वध का क्रम तो आगे आएगा, कैसे कैसे कितने असुरों का वध किए जो कंस के द्वारा भेजे गए, लेकिन बछड़ा चराने के अवस्था में तीन असुरों का वध किए, वत्सासुर बक्कासुर और अघासुर। तो कुछ असुरों का वध तो गोकुल में ही प्रारंभ हो गया, जैसे गोकुल में पुतना शक्टासुर तृणावर्त तीन असुर मारे गए गोकुल में। और जब जमलार्जुन वृक्ष गिरा दामोदर लीला के समय तब गोपो ने एक विशेष मीटिंग करके निर्णय लिया कि अब इस जगह पर नहीं रहना चाहिए, स्थान बदलना चाहिए। उपनंद जी ने घोषणा किया कि गिरिराज जी से पूरब और जमुना से पश्चिम जो समतल भूमि है वृंदावन, वहां हमें रहना चाहिए। तो उपनंद जी के मत को सब लोगों ने स्वीकार किया और फिर अपने गाड़ी छकड़े पर सारे सामानों को लाद करके वृंदावन आए। तो वृंदावन में एक साल तक निवास किए लगभग, तो वहां पर वत्सासुर बक्कासुर सब मारे गए। तो लगभग जन्म से तीन वर्ष तक गोकुल में रहे, ढाई तीन साल, फिर वृंदावन में तीन से चार साल के लगभग साढ़े तीन साल तक रहे, ढाई से साढ़े तीन या चार, और फिर नंदगांव में चार वर्ष से लेकर ग्यारह वर्ष तक रहे। तो गोकुल से स्थान बदल कर वृंदावन आए, और वृंदावन में भी जब वैसे ही असुरों का आक्रमण प्रारंभ हुआ तो फिर नंदीश्वर पर्वत पर नंदगांव में अपना निवास बनाए नंद बाबा। विश्वभानु महाराज के विशेष आग्रह से शांडिल मुनि के तपस्थली पर अपना निवास बनाए। यद्यपि वह निवास नंद बाबा का पहले का था, लेकिन उसको छोड़कर महाबन में रहते थे, तो फिर पुराने निवास स्थान में रहने लगे। तो इस तरह से श्री कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े होते गए तो विविध लीला प्रारंभ किए, बछड़ा चराए, वो है बाल्य लीला। कुमार लीला है। तो आगे दो श्लोक एक साथ कहते हैं, कौमारीम दर्शयन चेष्टाम प्रेक्षणी याम ब्रजऊ कसाम रुदन वह सन्मुग्ध बाल सिंहावलोकन स एव गोधनम लक्ष्म्या निकेतम शीत गो विषम चारयन अनुगायन गोपान रणद बेणूररी रमत। ब्रजौ कसाम प्रेक्षणीयाम कौमारीम चेष्टाम दर्शयन, ब्रजवासियों को देखने लायक दर्शनीय लीला शैशव उचित बाल्योचित लीलाओं को प्रकट करने लगे, दर्शन दिखाते हुए। तो बाल लीला एकदम साधारण मासूम बच्चों जैसा भोले भाले मुग्ध व्यवहार करने लगते थे। रुदन इव हसन वा मुग्ध बाल सिंहावलोकन, अद्भुत अद्भुत लीला करते थे। माताओं के आगे कभी अधेय वस्तु के लिए रोने लगते थे, लोभ प्रकट करते थे और हठ में ऐसे हठ करते आंख से आंसू भी नहीं आती, फिर भी रोने का नाटक करते, खूब चिल्लाते। बच्चों में बिल्कुल अद्भुत क्षमता है, कभी कभी बिल्कुल रोना नहीं आता, उनके आंखों में आंसू नहीं आता, फिर भी इतना चिल्लाते हैं कि कभी कभी माँ तो उनके चिल्लाहट पर क्रोधित होकर तमाचा लगा देती है। और कभी कभी बिना मतलब के इतना आंसू गिराते हैं कि अद्भुत। तो ऐसे ही भगवान सामान्य बच्चों जैसा रोते थे, किसी वस्तु के लिए जिद करते थे और मिल जाता था तो हंसने लगते थे। रुदन इव हसनवा, रोने जैसा हंसने जैसा बालोचित लीला करते थे। और मुग्ध बाल सिंहावलोकन, और भीषण दैत्यों के आने पर भी निर्भय एकदम सिंह के बच्चे जैसा निश्चिंत खड़ा हो जाते थे, मुग्ध बाल सिंह की तरह, कोई भय नहीं। सांड अगर मुड़ी टेढ़ा सिर टेढ़ा करके और अपना पैर से धरती कुदेरता था तो ये भी तिरछा मुंह करके उसके पास जाते थे और उसके सिंह को पकड़ लेते थे और सिंह के तरफ से ही पीठ पर चढ़ जाते थे। ये है। और स एव किंचित अधिकम वय प्राप्त सन, वही भगवान जब कुछ बड़े हुए तब लक्ष्मी निकेतम शोभा संपत्ति के निकेतन भगवान शीत गो विषम गो धनम चारयन, अब बड़े बड़े गाय और बैलों को चराने लगे, बछड़ा से आगे। 5 वर्ष के बाद 6वें वर्ष से गोचारण प्रारंभ किए और उस समय रणद वेणु बजाते हुए अनुगाय गोपान अरिरमत, अपने पीछे चलने वाले अनुगत गोपों को रिझाते हुए वृंदावन में विहार करने लगे। यह भगवान की अद्भुत लीला। कौमारी चेष्टम दर्शयन, अपनी कुमारावस्था से बाल्यावस्था से ब्रजवासियों को मुग्ध किया करते थे। जो सुखदेव गोस्वामी जिसको कहते हैं प्रेक्षणीयम कौमारी चेष्टम, दर्शनीय था, देखने लायक जो रूप था, जो लीलाएं वास्तव में देखने लायक थी, सारे ब्रजवासी उसमें विभोर रहते थे। ब्रजौ कसम, केवल नंद और जसोदा को ही सुख नहीं देते थे जिनके बेटे थे, बल्कि समस्त गोकुलवासियों को आनंद प्रदान करते थे, बहुत सुख देते थे, एक से एक सुख। घर में सब कुछ भरा है लेकिन दूसरे के घर में माखन की चोरी करते थे, अपने घर में भी कभी कभी चोरी करते थे। ये अद्भुत इनकी बाल चेष्टा थी। माँ जसोदा उनको गोद में लेकर एकदम ताजा माखन खिलाती थी तो कहते थे कभी कभी ना अच्छा नहीं लग रहा है, अरे एकदम ताजा है बेटा, बहुत अच्छा है, चख कर देखती थी माँ जसोदा, बेटा ये कितना मधुर है, खाओ, इससे शक्ति बढ़ेगी तुम्हारे शरीर में बल बढ़ेगा, तुम अपने साथियों को पकड़ते ही पटक दोगे, बलवान हो जाओगे, खा लो बेटा। बहुत फुसलाती थी, तब थोड़ा खाते थे, खाते ही कहते नहीं मैया खट्टा लग रहा है, मुझे उल्टी आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कोई गोपी आकर कहती कि बेटा कन्हैया मेरे घर बहुत मधुर माखन है, बड़ा मीठा, चलो हम खिलाएंगे, हमारे साथ आओ बेटा। तो उस गोपी को बहुत जोर से डांटते थे, तुम्हारे घर क्यों जाऊं, हमारे घर माखन नहीं है क्या, हमको भिखमंगा समझती है, इस तरह से डांट देते थे। तो इस प्रकार इससे ब्रजवासी बहुत प्रसन्न होते थे, और इधर डांट भी देते और फिर किसी गोपी के घर में जाकर चोरी से माखन खाते हैं, अपने समवयस्क गोपों को साथ में लेकर जाते बच्चों को और घर में चोरी करते, चोरी करके माखन खाते। और गोपियां जब कृष्ण को प्रेम पूर्वक देना चाहती तो नकार देते। तो कभी कभी गोपियां कहती थी कन्हैया तुम देने पर तो नहीं लेते हो, क्या बात कर रहे हैं उससे, देने पर नहीं ले रहे हो और घर में चोरी करने क्यों आते हो, ये ठीक नहीं है बेटा, तुम आसानी से आओ हमारे घर, हम तुमको माखन खिलाएंगे। तो श्री कृष्ण कहते थे कि देखो हम भिखमंगे नहीं है कि तुम्हारे घर जाएंगे, और दूसरी बात है कि चोरी के विषय में तुम कहती हो कि चोरी करके खाते हैं, तो चोरी करना कितना रिस्की काम है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना ध्यान देना पड़ता है, कौन व्यक्ति घर में है नहीं है, और बड़ी सावधानी के साथ घर में घुसना पड़ता है, सामान लेना पड़ता है, इसमें बहुत काफी परिश्रम है, तो हम परिश्रम करके खाते हैं, हम अपनी कमाई खाते हैं, हम तुम्हारे बाप का थोड़े खाते हैं, ना हम भिखमंगे हैं ना निठल्ले हैं, हम मांग कर भी नहीं खा सकते हैं और हम बैठ कर बिना काम किए नहीं खाएंगे, हम परिश्रम करके खाते हैं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, इस तरह से बोलते थे गोपियों से। गोपियां इनकी हर एक बात को बड़ा ध्यान से सुनती और सुनकर मुग्ध हो जाती थी। यह है प्रेक्षणीयम, यह है दर्शनीय लीला ब्रजऊ कसम। कौमारीम चेष्टम दर्शयन, इस तरह बाल लीला दिखाते थे। और फिर वर्णन करते हैं रुदन युवा, बिना रुलाई के रोने का नाटक करते थे। वास्तव में बच्चों के पास सबसे बड़ा बल है रोना, उस रुलाई के बल पर तो अपने माँ को एकदम बस में किए रहते हैं, कुछ भी काम घर में करती रहती हैं, और जब रोने लगते हैं तो सारा काम छोड़ना पड़ता है, कभी बिना आंसू बहाए भी चिल्लाते रहते हैं और कभी कभी अजस्र आंसू बहलाते हैं, गिराने लगते हैं। तो इस प्रकार भगवान की एक कौमारीम चेष्टम दर्शयन ये लीलाएं दिखा रहे हैं। और इस प्रकार शैशवोचित लीला जो है बाल्योचित उसको प्रकट करते, और कभी कभी अदेय वस्तु के लिए जो मिल नहीं सकता है उसके लिए जिद कर देते। जैसे मैया के गोद में बैठे हैं, शाम के समय आकाश पर दृष्टि गई, आकाश में तो चंद्रमा दिख गए, तो कहते हैं मैया मैं चंद्र खिलौने नहीं हूं, मुझको चंद्रमा चाहिए, वो आकाश का चंद्रमा मुझको दो। तो मैया जसोदा कहती बेटा वो माखन का लोंदा नहीं है जो तुम मांग रहे हो, दूर है आकाश में, वो नहीं यहां आ सकता है, नहीं मुझको चाहिए मुझको चाहिए मुझको चाहिए, हाथ पैर पीट कर रोने लगे। अब कैसे चाहिए, तो कुछ गोपियां बुद्धिमानी से कृष्ण को चंद्रमा दिखाती थी, परात में पानी भरकर बड़े बर्तन में, कहती थी बेटा आंख बंद करो, हम चंद्रमा को बुलाएंगे मंत्र से, आंख बंद करो। तो आंख बंद करते थे, इसके बाद कहती हाँ खोलो आ गया चंद्रमा, देखो परात में, अब ऊपर नहीं देखने दे, नीचे परात में पानी में देखते तो हाँ आ गया, तो अब चंद्रमा को पकड़ने के लिए जो ही पानी में हाथ डाल देते हो पानी हिल जाता डिस्टर्ब, अरे कहाँ गया। तब गोपिया कहती कि बेटा तू छुओ मत, छूने से फिर भाग जाएगा, देखो तुम यहां छूने लगा चला गया ऊपर देखो। तब देखा अरे ऊपर चला गया, कहते हाँ ऊपर चला गया, तुम आंख बंद करके चुपचाप रहोगे कुछ देर तक, छुओगे नहीं तब आएगा, छूने पर तो भाग जाएगा। तो फिर आंख बंद करते, फिर चुप रहते, फिर पानी में आ जाते, दिखाती देखो आ गया। तो इतना भोले बच्चों की तरह भगवान लीला करते, सर्वज्ञ ईश्वर एक अज्ञ बालक की लीला कर रहे हैं। ये है कौमारीम चेष्टम दर्शयन, रोने लगते थे कभी कभी, विवाह के लिए हट करने लगते थे, मैया मेरा विवाह करा दो, मेरा विवाह करा दो। अरे तुम सयाने हो जाओगे तो विवाह होगा बेटा, तुम ऐसा क्यों जिद कर रहे हो। तो फिर पूछते थे मैया विवाह में क्या होता है, विवाह का माने नहीं जानते थे, लेकिन सुनते थे बारात जा रहा है विवाह हो रहा है, तो कहते थे हमारे हमको भी विवाह करा दो, हमें विवाह कराना है। तो फिर मैया से पूछते मैया विवाह में क्या होता है, तो माँ बताती माँ जसोदा की बेटा दूसरे घर की बहू बेटी आती है साथ में रहती है पत्नी, तो कहते थे हम भी विवाह करूंगा। तो किससे विवाह करोगे, तो देख लिए थे विश्वभानु लली राधा रानी को, मैं राधा से विवाह करूंगा, मुझको बहुत अच्छा लगती है मैया, उससे विवाह करा दो। तो माँ जसोदा बताती थी कि ठीक है वो तुम्हारे घर आएगी, तुम्हारे साथ रहेगी और साथ रहकर तुम्हारे साथ खेलेगी खाएगी सोएगी सब बतलाते थे। तब भगवान के मन में आने लगा कि मेरे साथ रहेगी मेरे घर में रहेगी, तो देखिए बालवत लीला कहते हैं मैया मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाए अपने घर, हमारे नए नए खिलौने घर में हैं और राधा आएगी तो हमारे खिलौने को लेकर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे मैया, हमको नहीं विवाह करना है ना, हम राधा को अपने घर नहीं रहने देंगे, हमारे खिलौने को लेकर भाग जाएगी। इतने छोटे मासूम बच्चे है कौमारीम चेष्टम दर्शयन, एकदम मासूम बच्चों जैसा लीला करते थे। और अगर कुछ मिल जाता जो चाहते थे वो मिल जाता तो हंसने लगते थे, हंसने लगते। और भयंकर दैत्यों के आने पर मुग्ध बाल सिंहावलोकना, एकदम सिंह की तरह छाती अड़ा करके खड़ा हो जाते थे, चाहे असुर आवे चाहे सांड आवे चाहे कुछ भी हो, देखते रहते थे, भयभीत होते ही नहीं। कभी कभी कुत्ते जब आपस में भौंकते थे, भौं 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 कुत्ते भौंक रहे हैं, तो कृष्ण जाकर भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में हाथ लगा देते थे, कुत्ते काट भी नहीं पाते थे, एकदम देखते रह जाते थे, एकदम निर्भय। और कभी कभी किसी गोपी के घर में खूंटी पर टंगा हुआ तलवार उठाकर म्यान से निकाल लेते, गोपी कुछ दही मत रही है भोजन बना रही, अरे लाला कट जाएगा हाथ कट जाएगा कट जाएगा, दौड़ कर छीनने लगती थी। एक साथ ही कई जगह लीला करते थे, ऐसा नहीं कि एक घर में कर रहे हैं और घर में नहीं, कहीं तलवार खींच रहे हैं, कहीं कुत्ते के मुंह में हाथ लगा रहे हैं, और कहीं आग जल रहा है उस जलते हुए आग में जाकर कूद जाते थे, सब लोग दौड़ कर निकालो कन्हैया आग में गिर गया आग में गिर गया। कभी गोपियां गांव के बाहर कुएं पर पानी लेने जाती थी, क्योंकि हर गांव का पानी मीठा नहीं होता है ब्रज में, गांव से बाहर के कुएं मीठा जल होता है, तो दूर जाती हैं भीड़ लगाकर कुएं से पानी निकालती हैं, आज भी वो दृश्य मिलता है देखने को। तो कृष्ण दौड़ते हुए जाते थे और कूद जाएगा कुआं में, सब काम सब बाल्टी उल्टी छूट जाता था और कृष्ण को पकड़ने लगती थी, कभी कभी तो दौड़कर कुएं में कूद भी जाते थे, कुआं में गिर गया कन्हैया कुआं में उनका कुछ नहीं बिगड़ता था, न चोट लगता न कहीं कुछ होता, आग में कूदने पर भी जलते नहीं थे, कुएं में कूदने पर भी कोई चोट नहीं लगता, लेकिन सारे ब्रजवासियों को अपने ओर आकृष्ट कर लिए। और कभी कभी जंगल तो था ही गोकुल में ब्रज में, जंगल के कुंजों से नालियों से नाले से कोई सांप निकल कर आता था, बड़ा भयंकर सांप फुफकार करते हुए, तब तक जाकर उस सांप को पकड़ लेते थे, पकड़ करके सांप को ऐसे हिलाने लगते थे, और ये कन्हैया छोड़ दे सांप, सांप काटेगा, उनके शरीर में सांप लपटा जाता, उसको खींच कर फेंक देते, कभी कभी उसका फन पकड़ लेते। तो इस प्रकार परम वत्सल माता पिता व्याकुल हो जाते, अरे कन्हैया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सबका चित अपने में खींचने का उपाय करते थे अपने बाल लीलाओं द्वारा। कभी सांड के ऊपर चढ़ जाते थे और सांड जब भागने लगता तो उसके ककुद को पकड़ कर पीछे से कहते मैं महादेव हूं, ये नंदीश्वर है। तो इस तरह से बड़े बड़े पहलवान लोग सांड को घेर कर रोकते और उनको उतारते। ये है कृष्ण की बाल लीला। और फिर कभी कभी अपने को माता जसोदा के सामने, गोपियों के सामने या गोप बालकों के सामने अपने को भगवान भी कहते थे। कहते थे तुम लोग जानते हो श्रीदाम सुबल मन सुखा, तुम लोगों को पता नहीं है ना मैं भगवान हूं। भगवान है? हाँ, मैं ही रावण को मारने वाला श्री राम हूं, हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नृसिंह हूं। तो साथी कहते थे चुप रहो बकवास मत कर, भगवान बना है। कभी कभी अपनी मैया से भी बहस करते थे, मैया एक बात बताऊं, त्रिलोकी को नापने वाला त्रिविक्रम जो बामन बलि महाराज के यहां बलि के जग में गए थे और तीन डेग में सारे लोग को नाप लिए, दो डेग में ही, एक डेग में नीचे के लोग एक डेग में ऊपर के लोग, वो बामन कौन था तुमको पता है? मैं ही था। तो मैया कहती अच्छा तू बामन है? कहते हाँ मैया मैं बामन त्रिविक्रम हूं। कहते हैं थोड़ी सी ऊंची देहली चौकट पार करने में चिल्लाता है मैया मुझे पार करा दे, और त्रिलोकी नापने वाला हो गया। कहते मैया तू नहीं जानती है हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नृसिंह मैं ही हूं, रावण का वध करने वाला श्री राम मैं ही हूं। तो मैया कहती चुप रह बकवास मत कर, बिल्ली बोलती है तो दौड़कर गोद में चिपक जाता है नृसिंह बना है, पता नहीं कहां से सुन लिया, जो भी सुन लेता है बस वही कहने लगता है चुप ज्यादा बहस मत कर। इस तरह से अपनी मैया से बात करते थे, अपने ब्रजवासी सखाओं से बात करते थे और अपने मधुर बोली से ब्रजवासियों को प्रभावित किए थे। यह है श्री कृष्ण की बाल लीला, कौमारी लीला, कौमारी दर्शन चेष्टा प्रेक्षणीय ब्रज उकसम, ब्रजवासियों को आकर्षित करने वाला ये बाल लीलाएं करते थे। महाराज श्री कहते हैं कि जब दामोदर लीला के समय मैया के द्वारा बंधे गए, बांध दिए गए थे, तो उस समय श्री बलराम जी घर में नहीं थे, रोहिणी जी के साथ किसी दूसरे घर में गए हुए थे, और बाद में जब आए तो देखे कन्हैया बंधा हुआ है। रोहिणी जी भी आई, कहीं कैसे बंधा है, कौन बांधा है? तो जसोदा। तो रोहिणी जी तो चली गई कि कुछ गलती किया होगा, तो जसोदा बांध दी है, दंडित की है। लेकिन बलराम जी गए और जाकर कन्हैया के पास कहने लगे, मैं रोज रोज कहता था कि कन्हैया ऐसे मत उत्पात कर भैया, लेकिन तू मानता नहीं था, आज मैया बांध दी ना। तो कृष्ण रो 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 कर कहते थे भैया खोल दो खोल दो। कैसे खोल दू, मैया जसोदा बांधी है, मैं खोलूंगा तो मुझे पीटेगी, चलो मैं पूछ कर आता हूं, अगर वो कह देगी तो खोल दूंगा। तो बलराम जी माँ जसोदा के पास गए और जाकर के जसोदा के पैरों पर पड़ कर कहने लगे कि मैया कन्हैया बहुत रो रहा है, खोल दूं उसको? तो माँ जसोदा कहती नहीं नहीं खोलना नहीं है, उसका दिन भर बांध कर रखना है, उसको न कुछ भोजन देना है न उसको खेलने देना है। बहुत उत्पात करता है। तो बलराम जी कहते हैं कि मैया रो रहा है, बहुत रो रहा है, मुझको बहुत दया आ रही है, खोल दूं? तो माँ जसोदा कहती तू बक बक मत कर, नहीं खोलना है, मैया रो रहा है, खोल दूं? बार 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 आग्रह कर रहे थे। तो माँ जसोदा बार बार मना कर रही थी, नहीं नहीं। तब तक बलराम जी को एकदम आवेश आ गया अपने भगवत्ता का, क्योंकि कृष्ण के इस तरह बंधन को बलराम सह नहीं पाए। कहने लगे, मैया तू कन्हैया को क्या बकरी का बच्चा समझती है? तुमको पता है कौन है? तो माँ जसोदा कहती है कौन है? कहते हैं सारे शिव ब्रह्मा के आराध्य, सकल विश्व ब्रह्मांड का नायक साक्षात भगवान है। हिरण्यकश्यपु को मारने वाला नृसिंह यही है, रावण का वध करने वाला श्रीराम यही है, और बलि के हाथ त्रिलोकी को नापने वाला यही त्रिविक्रम है वामन। क्या समझ कर रखी है, बकरी का बच्चा? तो माँ जसोदा कहती है और तू कौन है? अरे मैं महासंकर्षण हूं, ये समस्त ब्रह्मांड मेरे सिर पर सरसों के दाने के बराबर है, मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड जलने लगता है प्रलय के समय, और मेघनाथ को मारने वाला लक्ष्मण मैं ही हूं। माँ जसोदा उठाई छड़ी और कहीं और किसी का घर बाकी नहीं था, सारा अवतार मेरे घर होने लगा, और भागे श्री बलराम डर के मारे, हो गया उनकी भगवत्ता। ये है ब्रज की माधुर भाव, संबंध के आगे भगवान की भगवत्ता का कोई गुंजाइश ही नहीं। भगवान बलराम भागे और जाकर कृष्ण के पास कहते हैं कि भैया मुझको भी मारने के लिए छड़ी उठा ली। अब दोनों भाई रो रहे हैं वहां। भगवान ब्रजवासियों के प्रेम के अधीन होकर इस प्रकार लीला करते हैं। और जब कुछ बड़े हुए, 6-7 वर्ष के हुए, तो लक्ष्मा निकेतम खूब सुंदर शोभा आदि से संपन्न श्री भगवान गाय चराने लगे। शुक्ल, नील, हरित, पीत, धूमल, तरह तरह की गायें और बैल चराते हुए अपने अनुगत गोप बालकों को आनंदित करते हुए लीला विहार करने लगे। सभी लीलाएं अत्यंत मधुर और आकर्षक हैं। दशम स्कंद में श्रीमद् भागवतम में विस्तार से सबका वर्णन है। तो इस प्रकार श्री भगवान मधुर लीलाएं कर रहे हैं। आगे उद्धव जी श्री कृष्ण के ब्रज लीलाओं का स्मरण करते हुए कहते हैं, प्रयुक्तान भोज राजे न माइन काम रूपिण लीलया व्यनु दत्तांस्तान बाल कीर्डन का निव। बाल कीर्डन का निव, जैसे कोई बच्चा कागज या पत्तों का बनाए हुए खिलौने को बात के बात में नष्ट कर देता है, तोड़ देता है, वैसे ही भोज राजे न प्रयुक्तान काम रूपिण माइन तान तान लीलया व्यनुदत। जो भी कंस के द्वारा भोज राजे न प्रयुक्तान, भोज राज कंस के द्वारा जितने निजुक्त किए गए, भेजे गए असुर आए, और उन असुरों की विशेषता क्या है, काम रूपिण माइन, अपनी कामना के अनुसार इच्छा के अनुरूप रूप धारण करने वाले थे, जैसी इच्छा होती वैसा रूप बना लेते थे। ऐसे असुर जो जो ब्रज में आए, जितने असुर आए, तान तान उन सभी असुरों को खेल खेल में कृष्ण मार डाले। जैसे कागज के बने हुए खिलौने को बच्चे तोड़ देते हैं, या पत्ता के बने हुए खिलौने को तोड़ देते हैं एकदम हल्का, वैसे कृष्ण उन असुरों को तोड़ फोड़ कर फेंक दिए। व्यनु दत्त एकदम साधारण, व्यनुदत्त का मतलब मार दिए,
तांता लीलया बेनुदत्त, लीला में खेल खेल में मार डाले। जैसे कागज का कोई सिंह बना दिया जाए एकदम, देखने में तो बड़ा भयंकर लगे लेकिन बच्चे खेलते खेलते उसको पकड़कर तोड़ सकते हैं, विनष्ट कर देते हैं। वैसे ही कंस के द्वारा भेजे गए असुरों को कृष्ण मार डाले। कंस के द्वारा बहुत असुर भेजे गए, इनका क्रमशः वर्णन है। मुख्य रूप से ब्रज में आने वाले 14 असुरों का वध किए हैं कृष्ण बलराम मिलकर। शुरू में पुतना आई, उस समय श्री कृष्ण की अवस्था 6 दिन का था और कोई हथियार नहीं उठाए, केवल अपने मुलायम अधरों से उसके स्तन को पकड़े और मार डाले। वो पुतना का वध गोकुल में हुआ। इसके बाद जब श्री कृष्ण 3 महीना के हुए, करवट बदलने का उस समय लीला चल रहा था, औथानिक लीला, और उस समय उत्सव हो रहा था नंद भवन में। उस समय एक असुर एक शकट पर गाड़ी के ऊपर चढ़ कर आया, ऊपर था, और वो इंतजार कर रहा था कि कब उतर करके कृष्ण का गला घोंट दे। तो साधारण बच्चों जैसे रोते हुए हाथ पैर उछालते हुए पैरों से मार दिए, शकट उलट गया, उसमें वो शकटासुर मारा गया दूसरे नंबर में। और फिर तीसरा असुर था, जब कृष्ण 3 महीना से कुछ ज्यादा लगभग 100 दिन के थे, तो उस समय एक असुर आया तृणावर्त, आंधी तूफान के साथ, कोई अपना रूप धारण करके नहीं आया, हवा के रूप में आया, जमुना के सारा बालू लेकर एकदम ब्रज के गलियों में गोकुल में पूरा भर दिया। 2-4 फीट भी देखना मुश्किल हो गया था, इतना धूल, इतना कंकड़, बालू, अंधेरा छा गया पूरा। और उसमें श्री कृष्ण आंगन में बैठे हुए थे, उनको उड़ा ले गया ऊपर बाउंडर करके, और ऊपर ले जाकर अपने असली रूप में प्रकट हो गया। तो श्री कृष्ण उसके पीठ पर गला को पकड़कर मानो अस्खलन परिहार के लिए, गिर न जाए इसके लिए भगवान उसके गला को पकड़े, और गला पकड़कर लटक गए पीठ के तरफ और धीरे से दबा दिए। बस वो आंख उलट गया, गिर पड़ा नीचे, एक पत्थर के चट्टान पर गिरा और मर गया। तो एक तीसरा असुर के रूप में आया था तृणावर्त। उसी क्रम में एक दिन भगवान मिट्टी खाने के बहाने माँ को ब्रह्मांड भी दिखाए थे, अपने मुंह के अंदर सारा जगत विश्व ब्रह्मांड दिखाए थे। उसमें तो कोई असुर संहार नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक ऐश्वर्यमय लीला है। चौथा असुर वत्सासुर आया, और ब्रह्मांड दिखाने और उखल बंधन के बाद, जमलार्जुन उद्धार के बाद, जब पेड़ गिरा उसके बाद गोपों ने निर्णय लिया कि अब गोकुल में नहीं रहना चाहिए, तो फिर वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन आने में कृष्ण वत्स चारण चालू किए, बछड़ा चराना। उस समय लगभग कृष्ण की अवस्था 3.5-4 वर्ष की थी। उस अवस्था में एक असुर आया बछड़ा बनकर, जिसका नाम था वत्सासुर। तो वत्सासुर का वध किए, श्री बलराम के संकेत से उस बछड़े को पकड़े, पीछे के पैर को पकड़कर आकाश में घुमाने लगे उठाकर, और कैथ के वृक्ष पर फेंक दिए, और वह छटपटाता हुआ मर गया, घुमाते समय ही मर गया। यह लीला वृंदावन में हुई। इसके बाद पांचवा असुर के रूप में आया बक्कासुर, बकुला का रूप धारण करके। एक बार कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए आए थे खदीर वन, जो खैरा है, उस समय वत्सचारण ही कर रहे थे, लगभग 4 वर्ष की अवस्था थी। तो एक अद्भुत अनोखा बछड़ा दिखाई, बकुला दिखाई दिया, बक। वो लगता था कि कोई हिमालय का एक शिखर ही टूट कर पड़ा हो, बड़ा ऊंचा बकुला। बच्चे इतने लंबे चौड़े जीव को नहीं देखे थे बकुला के रूप में, तो जाकर कौतूहल बस देख रहे थे सब लोग घेर कर निकट से। तब तक कृष्ण भी चले गए, निकट चले गए उसके, देख रहे थे बहुत निकट से, तब तक अपना चोंच फैलाया और कृष्ण को निगल गया एकदम पेट में। लेकिन अंदर जाते ही ऐसा महसूस होने लगे कृष्ण, अंदर जाते ही ऐसा लगने लगे मानो आग खा गया हो, इसलिए फिर से उपटी कर दिया। और ज्यों ही बाहर गिरे निकले कृष्ण, त्यों ही उसके चोंच को पकड़कर एकदम घास की तरह चीर कर फेंक दिए। यह बक्कासुर पांचवा असुर। इसके बाद छठवां असुर के रूप में आया अघासुर। उस समय भी बछड़ा चला रहे थे, नंदगांव में आ गए थे, तो नंदगांव से बछड़ा चलाते हुए पूरब के तरफ लगभग चौमुहा जो है आज उसके आसपास माने वृंदावन के निकट 5 वर्ष के अवस्था में कृष्ण थे, तो अघासुर आया था अजगर बनकर सांप, और सारे बच्चे उसके पेट में बछड़ों के साथ चले गए। श्री कृष्ण को जब पता चल गया कि असुर अजगर के रूप में आया है और बच्चे इसके पेट में चले गए अनजान बस, तो उसके मुंह में गए और अपने शरीर को बढ़ाए, बढ़ाकर पूरा एयर टाइट कस दिए। इसके बाद उसका पेट फट गया और भगवान बछड़े और बच्चों को निकालकर बाहर आए। इस प्रकार उस असुर का वध हुआ, अघासुर। सबका वर्णन है दशम स्कंद में डिटेल। इसके बाद जब कृष्ण गाय चराना प्रारंभ किए छठवें वर्ष में, तो गोचारण लीला के समय जब गिरिराज जी के तलहटी में गाय चरा रहे थे, तो गोप बच्चों के विशेष आग्रह पर ताल वन में एक असुर रहता था जिसका नाम था धेनुक। वो गधे के रूप में रहता था और पूरे वन पर कब्जा किया था, कोई पशु उसके भय के मारे नहीं जा पाते थे और न कोई आदमी। तो ताल वृक्ष से फला हुआ फल पक पक कर नीचे गिरता था और उसका सुगंध हवा में फैला हुआ था। गोप बच्चे कहने लगे, हे भैया कृष्ण बलराम, इतना सुगंध ताल फल का आ रहा है, मन करता है कि उसका स्वादन किया जाए। तो कृष्ण कहे कि तो खाया जाए चलो, कहते लेकिन इतनी आसानी से नहीं खाया जा सकता है, वहां एक असुर आता है धेनुक गधे के रूप में, और उसके साथी समाजी के लोग भी हैं, बहुत सारे गधे हैं, कोई मनुष्य उस वन में नहीं जाता है न कोई पशु, केवल आकाश में उड़ने वाले पक्षी भर जाते हैं बस, तो उसको बिना मारे हम नहीं वो फल खा सकते हैं। तब बलराम जी कहे कि अच्छा ठीक है तो चलो मैं चलता हूं। तो बलराम जी आगे आगे चलने लगे, कृष्ण को कहे तू पीछे रहना। तो भगवान अपने साथियों के साथ हंसते हैं, भगवान वर्णन है, भगवान को खूब हंसी आ रही है कि कितना असुर ब्रज में आ रहे हैं, कभी उत्साह नहीं दिखाए, गधे को मारने में देखिए उत्साह। बलराम जी कृष्ण से विशेष स्नेह करते थे, वो चाहते थे कि कोई असुर सामने ना आवे, लेकिन जब कृष्ण की इच्छा होती तो छोड़ देते, क्योंकि उनके भगवत्ता का भी बोध बलराम जी को पूर्ण रूप से था ही। लेकिन उस दिन धेनु का वध करने के लिए बलराम जी आगे चले और जाकर एक ताल वृक्ष को झकझोर कर हिलाए, उसके हिलाने से फल गिरा और बहुत जोर से आवाज हुआ। तो धेनुक जब आवाज सुना तो दौड़ा और दौड़ करके बलराम जी के छाती पर दुलत्ती मारा, जमकर गदा था दोनों पैर पीछे जोड़कर मारा, मार करके भागा और भाग कर देखता है तो बलराम टॉस से मस नहीं वहीं खड़ा है। तो उसको और क्रोध आ गया कि अरे मेरे इतने प्रचंड पदाघात से भी बलराम आहत नहीं हुआ, तो फिर दौड़कर दोबारा मारने के लिए आया। जेव ही मारने के निकट आया तेव ही बलराम बाएं हाथ से उसके दोनों पैरों को पूंछ के सहित पकड़ लिए और आकाश में घुमा करके खूब रन बनाकर पेड़ पर फेंक दिए, ताड़ वृक्ष पर। और ताड़ वृक्ष पर गिरा वो असुर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा टकरा कर सारे पेड़ एकदम झरझर झरझर गिरने लगे, झंझावात आ गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आश्चर्य करने की बात नहीं है, श्री बलराम के ही अंशभूत है कारणोदक शाही, गर्भोदक शाही, क्षीरोदक शाही, ये सारा जगत श्री बलराम अनंत के ही कारण से उत्पन्न हुए हैं। और बलराम के तेज से अगर वृक्षों में झंझावात आ गया वन में, तो इसमें क्या आश्चर्य है। ये अनंत की लीला है श्री बलराम की। तो इस प्रकार और जो भी असुर धेनु के साथी थे, गधे के रूप में पड़े हुए थे, वहां दौड़ दौड़ कर आए, किसी को कृष्ण किसी को बलराम, पकड़ पकड़ कर ऐसे ही घुमा घुमा कर मारे। तो इस प्रकार धेनु का वध हुआ। फिर कंस के द्वारा तो प्रेरित नहीं था, वो अपने भय से, गरुड़ जी के भय से भाग कर, एक सर्प आया था वृंदावन में, कालिए, वो कालिए के जमुना के एक गंभीर हरद को, हृदय को दूषित कर दिया था। जमुना के मुख्य धारा में कालिए नहीं रहता था, जमुना के बगल में मुख्य धारा से हटकर एक हरद था, उसमें कालिए रहता था, और उसके कारण वो जल दूषित हो गया था। तो श्री भगवान कालिए का दमन करके भी उसको ब्रज से बाहर भेज दिए। एक विशेष लीला है कालिए दमन। तो कालिए भी एक असुर जैसा ही ब्रज में आतंक फैलाया था, दूषित कर दिया था जल को। झील था कालिए झील, उस झील को कालिए दह या हरद कहते हैं। इसके बाद एक प्रलंब नाम का असुर आया, गोप बालक के रूप में आकर वो गोप बच्चों के साथ खेलने लगा भांडीरवट में। तो कृष्ण के पक्ष से वो खेल रहा था, वो सोच रहा था कि बलराम बहुत तगड़ा है, आगे बलराम को मारेंगे, इसके बाद कृष्ण को तो आसानी से मार लेंगे। तो खेल खेल में दोनों पक्ष, जो दाव हार जाएगा वो ढोएगा, ऐसा करके खेल चालू हुआ। कृष्ण का पक्ष हार गया, इसलिए पीठ पर टांग कर ढोने का बारी आ गई कृष्ण के पक्ष वालों को। तो उसी में प्रलंब भी बच्चों को ढो ढो कर पहुंचाने लगा। तो जब बलराम जी को अपने पीठ पर लिया, तो भांडीर बट पर न रख करके वो आकाश मार्ग में, जैसे फ्लाइट जमीन छोड़ती है आकाश में ऊपर चली जाती है, वैसे बलराम को लेकर उड़ने लगा। तो बलराम जी सोचे, अरे ये तो आकाश मार्ग से जाने लगा और वो भांडीर बट पार कर गया। तो बलराम जी खींच करके मुक्का मारे, उसके सिर पर सिर फट गया, खून उगलते हुए प्रलंब गिर गया। तो इस प्रकार भगवान बलराम प्रलंबासुर का वध किए। और इसके साथ श्री भगवान एक अजगर का भी वध किए थे, जो सुदर्शन नामक विद्याधर था, जो उनके पिताजी को पकड़ा था रात में। अंबिकावन में नंद बाबा पूजा के लिए गए थे, तो वहां पर नंद बाबा को ग्रास लिया था। तो सब ब्रजवासी चिल्लाने लगे, नंद बाबा को निगल रहा था, तो श्री भगवान श्री कृष्ण उसको वध किए, उसको मारे। तो फिर वो सुदर्शन नामक विद्याधर था, वो अपना अजगर शरीर छोड़कर, इसी के श्राप से वैसा शरीर मिला था, अपने लोग को गया। और एक बार श्री कृष्ण बलराम गोपियों के साथ सांस्कृतिक गोष्ठी मना रहे थे, गान बजान चल रहा था, वहीं पर एक शंखचूर नामक असुर आया और कुछ गोपियों को लेकर भागने का चेष्टा किया। तो उसको श्री कृष्ण वध किए और उसके सिर का मणि निकालकर बलराम जी को दिए, और बलराम जी फिर श्रीमती राधा रानी को दे दिए। ये सब 11वां असुर। और 12वां असुर के रूप में आया अरिष्टासुर, सांड बनकर राधा कुंड के निकट बहुत दहाड़ रहा था। भागवत में वर्णन है कि उसके चिल्लाहट से, दहाड़ से गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया। इतना भयंकर दहाड़ करते हुए सूर्यास्त के समय आया था। श्री कृष्ण बलराम समझ गए कि असुर है, सांड के रूप में आया है। तो फिर भगवान उसको पकड़ करके, ऐसे पकड़ कर उसके पैर को, सिर को ऐसे मोड़े जैसे भींगे हुए चादर या कंबल को गाड़ा जाता है, पानी में निचोड़ा जाता है, वैसे निचोड़ दिए, सारा कचूमर निकल गया,
अरिष्टासुर का वध किए। इसके बाद एक असुर था व्योमासुर, अभी खेल खेल में उधर काम बन के तरफ वो बच्चों को छिपा रहा था एक गुफा में, तो उस समय कृष्ण उसका वध किए और उसके समय पृथ्वी एकदम डगमगाने लगी, तो भगवान बलराम पृथ्वी को संभाले दबा करके। और अंतिम असुर था कंस के द्वारा भेजा गया केसी, जिस दिन भगवान को आना था उसके एक दिन पहले केसी का वध किए, जब मथुरा आने से एक दिन पहले, तो केसी आया था घोड़े के रूप में। श्री भगवान उसके मुंह में हाथ लगा करके उसका वध किए, केसी केसी असुर का वृंदावन वध किए जमुना के तट पर, उसके नाम से आज घाट है केसी घाट, तो केसी असुर का वध किए। इस प्रकार सब मिलाकर कालिये के अतिरिक्त 13 असुर ब्रज में आए थे, जो अलग अलग ढंग से कृष्ण के द्वारा इन 14 का दमन किया गया कालिये सहित। तो ये सब भोज राजेन प्रयुक्तान काम रूपिण माइन बध क्रम है, बध होने का एक क्रम, इस प्रकार से बध किए गए। तो जिन लीलाओं की मैं चर्चा कर दिया उसी में कुछ लीलाओं का भी वर्णन कर रहे हैं। विपन्नान विस्पाने न निगृह्य भुजगाधिपम उत्थापया पाय अदगाव तत्तोयम प्रकृतिस्थितम। तो भुजगाधिपम निगृह्य विस्पाने न विपन्नान गोपालान गाव च उत्थाप्य प्रकृतिस्थितम तत्तोयम अपायत। सर्पराज कालिये का दमन करके भगवान विषैले जल के पीने से मरे हुए गोपों और गायों को उठाकर पुनः जीवित किए और उस जमुना के हरद को दह को निर्विष किए और सबके पीने लायक जल बनाए। कालिये दमन लीला का वर्णन कर रहे हैं, जिसका वर्णन विस्तार से 10वें स्कंध में है। कालिये ह्रद के विषैले जलपान से मृत प्राय हो गए थे, मर चुके थे गोप और गायें, उनको उठाकर मृत्यु से मुक्त करके भगवान कालिये नाग का दमन किए, निर्विष कर दिए जमुना जल को और सबके लिए सुलभ कर दिए। कालिये एक नागराज है, सर्पराज, बहुत भयंकर सर्प है। उसकी कथा कल संयोग बस गरुण जी का वर्णन के क्रम में विस्तार से कहेंगे, कल आएगा। तो कालिये गरुण जी से बैर कर लिया था और उसके कारण गरुण जी उसको मारना चाहते थे, तो गरुण जी के भय से भाग कर वृंदावन रह रहा था। वृंदावन में पहले एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था सौभरी, और जमुना के जल में घुस कर तपस्या करते थे। एक बार गरुण जी उधर आ गए, तो गरुण जी के भोजन तो मछली जीव जंतु हैं, वो हिंसक पक्षी हैं। तो जमुना के तट पर एक बार आकर कुछ नाश्ता करने लगे मछलियों का, तो मछलियां भाग कर भीतर गई और सौभरी मछलियों का दुख देख करके बाहर निकले और गरुण जी को श्राप दे दिए, तत्काल यहाँ से भाग जाओ नहीं तो जलकर भस्म हो जाओगे, अब कभी भी इस जमुना के हरद के सामने आएगा तो जल जाएगा। तो अब तो तपस्वी साधु थे, उनका श्राप लगना ही था, इसलिए गरुण जी वहां से भाग गए और वह स्थान गरुण के लिए सदा के लिए रहित हो गया। अब गरुण जी वहां नहीं आ सकते क्योंकि वहां आते ही वो जल जाते। और किसी तरह से कालिये इस बात को सुन लिया था, कहीं से उसको सूचना मिल गई, तो गरुण से भयभीत होकर कालिये भाग कर वृंदावन में निवास कर रहा था। तो कालिये के रहने से वो जल दूषित हो गया क्योंकि उसके मुख से इतने विष निकलते थे और जमुना का जल इतना दूषित हो गया कि ऊपर हवा में उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर गिर जाते थे और जल जाते थे, इतना विषैला जल था। भगवान को जब पता चला कि ये हमारे वृंदावन के सौंदर्य में एक बहुत बड़ा बाधा है, इतना दूषित जल कर दिया है, तो श्री भगवान उसको पवित्र करना चाहे, शुद्ध करना चाहे,
इसके लिए एक भंगी से उस काली के अंदर प्रवेश किए, उस हरद के अंदर काली के निवास के कारण उस हरद का नाम काली हरद हो गया या काली दह, और काली का दमन किए, उसको खूब धुनाई किए। वो अपने शरीर में लपेट कर भगवान को मारना चाहता था, लेकिन भगवान खींच कर ऊपर लाए और बड़ी फुर्ती से उसके शरीर से निकल गए, और 1001 फन, भयंकर फन उठा उठा कर कृष्ण को डसना चाहता था। जो फन उठाता था उसी को दबा देते थे, हारमोनियम की पत्ती की तरह दबाने लगे। पूरा 1001 फन पर भगवान नाचते थे, उसमें 100 फन प्रधान था, बड़ा बड़ा और बाकी छोटा। तो कोई कोई 101 फन कहते हैं, लेकिन हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 1001 फन था, उसमें 100 प्रधान था। तो इस प्रकार भगवान कालिये का दमन करके उसको अपने देश रमणक द्वीप भेज दिए और कहे कि अब तुमको गरुण से कोई भय नहीं है, क्योंकि हमारा चरण चिन्ह जो तुम्हारे सिर पर है, फुट प्रिंट, वो मुहर देखकर गरुण तुमको नहीं मारेंगे, जान जाएंगे कि भगवान से इसका संबंध है। तो फिर कालिये अपने रमणक द्वीप को चला गया। इसके बाद अब गोवर्धन धारण और रास विहार दो लीला को कहकर फिर उत्तरार्ध के मथुरा द्वारिका की लीलाओं को कहेंगे दूसरे अध्याय में। अभी 2-3 श्लोक में ब्रज की लीला अभी बाकी है, उसको कह रहे हैं। आया जयद गोसवेन गोपराजम दिजो तमयि बीतस्य चोरु भारस्य चिकीर्षन सद्वयम् विभुः। उरु भारस्य बीतस्य सद्वयम् च चिकीर्षन विभु दिजो तमयि गोसवेन गोपराजम अयाजयत। उरु भारस्य बीतस्य सद्वयम्, अति समृद्ध धन के सद्व्यय के लिए, जब धन घर में बढ़ जाता है तो उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, सद्व्यय करना चाहिए। सद्व्यय कहते हैं अच्छे कार्य में लगाना, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, यज्ञ करने में लगाना चाहिए। तो ब्रज में धन बढ़ा हुआ था, श्री भगवान आए थे, तो भगवान के अवतार के बाद ब्रज में बहुत धन बढ़ गया था, इन धन का सही उपयोग नहीं हो रहा था। वो परंपरा से इंद्र का पूजा करते थे साल में एक बार, तो भगवान के मन में आया कि ये लोग उचित ढंग से धन खर्च नहीं करते हैं। लोग अनजान बस रूढ़ी परंपरा का पालन करते हुए कुछ भी करते हैं अंधाधुन, ध्यान ही नहीं देते क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों कर रहे हैं इस पर कोई विचार नहीं। तो भगवान के मन में आया कि चलो इस इंद्र पूजा जो परंपरा से हो रहा है इसको बंद करना है, क्योंकि इंद्र को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, मान बढ़ गया है, अपने को आराध्य देव मान रहा है, तो उसका मान भंग करने की इच्छा से सर्व समर्थ विभु श्री भगवान दिजोतमयी शेष ब्राह्मणों के द्वारा गो समेन इंद्र पूजा भंग करके गो पूजा रूप यज्ञ प्रारंभ किए। गोराजम अयाजयत, एक गोपेश नंद बाबा के द्वारा, गोपराज नंद बाबा के द्वारा गिरिराज गोवर्धन का पूजा कराए। तो गो समेन माने इंद्र यज्ञ भंग करके गायों का पूजा के द्वारा, क्योंकि इंद्र का अहंकार मान बहुत बढ़ गया था, इसलिए भगवान उस मान को भंग करना चाहते थे। और उरु भारस्य अति समृद्धि बीत के सद्व्यय द्वारा इंद्र का मान भंग करके गो पूज रूप यज्ञ प्रवर्तन किए। एक विशेष युक्ति है, लोक में प्रसिद्ध है कि जब घर में धन बढ़ता है और नाव में पानी बढ़ने लगता है, कहीं से आने लगता है, तो बुद्धिमानी यही है कि बड़ी उदारता से दोनों हाथ से उसको बाहर करना चाहिए। नाव में पानी बढ़े तो उसको दोनों हाथ से उलझना चाहिए, यही सयानों काम,
यही बुद्धिमानी है, अगर उसको आने दिया जाएगा तो धीरे धीरे नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार धन घर में है, बढ़ रहा है, तो बुद्धिमानी से उसका दान करना चाहिए, उचित जगह पर सद व्यय करना चाहिए। तो इंद्र पूजा भंगे न कृता गवाम पूजई व गो सवस्ते न गोपराजम नंदम वितस्य चेति चकारादि इंद्रस्य मान भंगम कुर्वन उरुभारस्य अति समृद्धस्य। जो ब्रज में धन बढ़ा हुआ था, उस धन का सच्चा उपयोग कराने के लिए भगवान एक उपाय किए। दो कारण हुआ, धन का सही उपयोग क्या है इसको भगवान बताना चाहते थे, और इंद्र का जो अहंकार बढ़ा हुआ था उसको चूर करना चाहते थे। इंद्र के मन में था कि हम आराध्य हैं, हमारी पूजा होनी चाहिए। एक वैष्णव के अंदर पूजा की भावना कलंक है, अमानी होना चाहिए साधु को, वैष्णव को। तो इंद्र भगवान के सेवक हैं, वैष्णव हैं, लेकिन इस बात को भूल गए कि भगवान हमारे आराध्य ब्रज में आए हुए हैं, उनकी आराधना होनी चाहिए, उनके भक्तों की पूजा होनी चाहिए, इस बात को भूल गए थे। वास्तव में एक मान सम्मान का एक बुरा प्रभाव है, जिसको मान सम्मान मिलता रहता है वो धीरे धीरे मान सम्मान लेने की भावनाओं से युक्त हो जाता है, उसकी मानसिकता बिगड़ जाती है और अपेक्षा रखने लगता है कि हमको सम्मान होना चाहिए। जबकि वैष्णवता में भगवान की भक्ति में एक बहुत बड़ा अवरोध है, भक्त को अमानी होना चाहिए, दूसरे की मान देने की भावना होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, दैन्यता होनी चाहिए। भक्ति की एक कसौटी है, जब तक व्यक्ति दैन्य नहीं रहेगा, विनम्र नहीं रहेगा, तब तक उसके हृदय में भक्ति टिक नहीं सकती। अहंकार से भक्ति दूर चली जाती है, अहंकार बस वह किसी का अपमान कर बैठता है, सरलता पूर्वक भक्ति नहीं स्वीकार कर पाता। भक्ति का अर्थ है विनम्र, झुका रहे सबके सामने, अपने को दीनहीन माने, भगवान का सेवक होने के नाते सबके प्रति विनम्र होना चाहिए। यह विनम्रता वैष्णवता का भूषण है, और ठीक इसके विपरीत बहुत बड़ा कलंक है व्यक्ति के अंदर अगर अहंकार आता है, किसी भी तरह से अपने को बड़ा मानने का, अपने को पूज्य आदरणीय मानने की भावना बहुत बड़ी विडंबना है। तो श्री भगवान अपने भक्तों के लिए एक विशेष शिक्षा भी दिए कि सेवक के अधिकार को हमेशा समझना चाहिए। श्री भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना अपना स्वरूप है, स्वयं पूजा लेने की भावना ठीक नहीं है। यद्यपि इंद्र इस जगत के एक बहुत बड़े मैनेजर हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, और त्रिलोकी के जीवों के लिए वो वास्तव में पूज्य हैं, दूसरे के द्वारा वो पूज्य हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन स्वयं उनके अंदर पूज्य भावना नहीं होनी चाहिए। इसको भगवान इंद्र को प्रदान करना चाहते थे, उनका मान भंग करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे कि तुम्हारा पोजीशन क्या है। और दूसरी बात कि धन का सही उपयोग क्या है। श्री भगवान इंद्र के मान भंग और गिरिराज के पूजन के द्वारा संपूर्ण ब्रजवासियों को यह बताए कि वास्तव में गिरिराज जी आराध्य हैं, और गिरिराज जी श्री कृष्ण के दूसरा स्वरूप हैं, भगवान ही हैं, स्वयं विष्णु ही गिरिराज के रूप में हैं। ब्रज में बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती, भगवान के लीला पर विचार करने में उनकी बुद्धि मात हो जाती है, हार मान जाती है। ब्रह्मा शिव इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के माधुर्यमय लीला को समझने में फेल कर गए, और अंततः ब्रज में पर्वत बनकर, जड़ बनकर रहना स्वीकार किए। भगवान विष्णु के राज के रूप में, भगवान ब्रह्मा बरसाना के पर्वत के रूप में, ब्रह्मांचल कहा जाता है बरसाना के पहाड़ को,
और नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में भगवान शिव निवास करते हैं, जहां भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव जड़ बनकर निवास करते हैं वहां और किसी बुद्धिमान की बुद्धि कैसे काम कर सकती है। तो इस प्रकार भगवान यह बताना चाहे कि गिरिराज स्वयं भगवान हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए। हम ब्रजवासियों को जल देते हैं, लकड़ी देते हैं, घास देते हैं, सब तरह से पोषण करते हैं, इसलिए इनकी पूजा होनी चाहिए। और गिरिराज पूजन के बहाने विशेष रूप से श्री भगवान ब्राह्मणों की पूजा कराए। ब्राह्मण लोग जो गिरिराज पूजन के लिए आए उनका सम्मान किए, उनको दक्षिणा दिलवाए और गिरिराज जी को अर्पित करके प्रसाद खिलाए सबको। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि श्री भगवान गिरिराज पूजन के बहाने गायों की पूजा कराए। जितने ब्रज में गायें थी सब गायों को स्नान करा करके धो मान कर सुंदर ढंग से सजा करके उनके सिंहों में श्रृंगार करके विशेष ढंग से तेल लगाकर उनको सोने का हार पहनाकर उनके ऊपर वस्त्र लगाकर पुष्पमाला आदि करके श्रृंगार करके गायों को लाया गया गिरिराज में, और हरी हरी घास खिलाकर गायों को संतुष्ट किया गया और गायों के साथ गिरिराज का परिक्रमा किया गया। तो इस प्रकार भगवान गायों की आराधना भी सिखाए, किस तरह गाय की पूजा की जाती है, संपूर्ण जगत को शिक्षा दिए। एक विशेष बात है, हम लोग इस जगत में इस सिद्धांत को, इस बात को स्थापित नहीं कर पाते हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि श्री कृष्ण सर्वाराध्य हैं, शिव ब्रह्मा देवर्षि नारद शनकादिक सबके आराध्य हैं, सब लोग इनकी आराधना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के आराध्य कौन है? गाय। सारा जगत कृष्ण की आराधना करता है और श्री कृष्ण गाय की आराधना करते हैं, गायों के पीछे पीछे चलते हैं, गाय चराते हैं, गायों की पूजा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, गाय के बछड़ों के साथ गाय के खीरक में सोते हैं, गायों के पीछे पीछे चलते हैं और गोधन से जो समृद्ध संपदा है उसका उपभोग करते हैं, गाय के दूध पीते हैं, गाय से निकलने वाले दही माखन आदि का सेवन करके स्वस्थ रहते हैं। श्री कृष्ण अपने लीला के द्वारा संपूर्ण जगत को यह शिक्षा दिए कि गोधन सर्वश्रेष्ठ धन है और गाय सबकी आराध्या माँ है, इसकी सेवा होनी चाहिए। इस तरह की शिक्षा भगवान दिए। तो हम सभी कृष्ण भक्तों का यह दायित्व है कि जहां तक भी संभव हो अपने शक्ति सामर्थ्य गाय की सेवा करनी चाहिए। तो श्री भगवान इंद्र का पूजा बंद करा करके गो समेना कह रहे हैं, इस प्रकार गो पूजा रूप यज्ञ किए। गोपराज नंद के द्वारा गाय की पूजा कराए। वो तो गोवर्धन का पूजा तो एक बहाना था, वास्तव में गिरिराज जी का नाम गोवर्धन इसलिए है कि गाय गोधन को वर्धन करने वाले हैं, गाय को बढ़ाने वाले हैं, रक्षक हैं। अपने घास से, अपने झरनों के निर्मल जल से, अपने सुंदर लहराते हुए सघन वृक्षों से गायों का पालन करते हैं। गाय गिरिराज की तलहटी में हरी हरी घासें खाकर, वहां बहने वाली मानसी गंगा का जल पीकर, गोवर्धन के तलहटी में सघन वृक्षों के नीचे बैठकर जुगाली करती हैं आनंद में। तो इस प्रकार गायों का वर्धन करते हैं गिरिराज जी, इसलिए इनका नाम गोवर्धन है। गायों को बढ़ाने वाले भगवान हैं गोवर्धन गिरिराज जी। तो इस तरह से भगवान ने गायों का पूजा कराए, इंद्र का पूजा बंद करा करके गो पूजन कराए। गो समेना स्पष्ट रूप से है, गो समेना अयाजयत गो समेना गोपराजम द्विजोत्तमई। मुख्य रूप से पूजा दो का किया गया, गाय का और ब्राह्मण का। ब्राह्मणों के द्वारा गाय का पूजन कराए और नंद बाबा के द्वारा ब्राह्मणों की पूजन कराए। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों से गाय की पूजन किए, आरती कराए, पूजन कराए और फिर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा और भोजन देकर ब्राह्मणों की पूजा कराए। भगवान के विषय में प्रसिद्ध बात है कि श्री कृष्ण गाय और ब्राह्मणों के दक्षा के लिए आते हैं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण को प्रणाम करने का एक विशेष मंत्र है। उस मंत्र के द्वारा कहा जाता है कि हे कृष्ण, आपको हम नमस्कार करते हैं। किस कृष्ण को? जो गाय और ब्राह्मण के रक्षक है, जो नमो ब्रह्मण देवाय, ब्राह्मणों के जो देव हैं या ब्राह्मण जिनके देव हैं, ब्राह्मण जिनकी आराधना करते हैं, दोनों ओर से है, बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण जिनकी आराधना करते हैं, उस कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अथवा ब्राह्मण जिनके आराध्य हैं, जिनकी आराधना श्री कृष्ण करते हैं, जिन ब्राह्मणों के, तो ब्राह्मणों के आराध्य या ब्राह्मणों ब्राह्मण जिनके आराध्य हैं उस कृष्ण को, गो ब्राह्मण हिताय च, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए जो आते हैं, जगत हिताय, गाय और ब्राह्मण की पूजा करके जगत का हित करते हैं, ऐसे कृष्ण को, ऐसे गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार तो जब गोवर्धन का पूजा हो गया तो उधर मानी इंद्र को बड़ा अहंकार था, वो नाराज हो गया कि देखो हमारा पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो वर्ष तीन देव जहको पाद भग्न माने तिबिह वलह गोत लीला तत्रेण त्रातो भद्रानुगृहणता। जब इंद्र गोपों के व्यवहार से नाराज हो गए तो भारी वर्षा करने लगे, भीषण वर्षा किए, और भीषण वर्षा से व्यथित होकर दुखित होकर ब्रजवासी लोग कृष्ण के शरण में आए कि हे कृष्ण, तुम परंपरा से होने वाले पूजा को बंद करा दिए हो, इसलिए इंद्र नाराज हो गया, अब हमें बचाओ। तो श्री भगवान गोत्र लीला तपत्रेण त्रातः, श्री भगवान गिरिराज जी को एक छत्र की तरह उठा करके ब्रजवासियों की लीला रक्षा किए। तो इंद्र क्रोध से ब्रज को डुबाना चाहते थे, पूरे ब्रजवासियों को मारना चाहते थे, गोधन को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन श्री भगवान गिरिराज जी के शरण में ब्रजवासियों को बुलाए और कहे चलिए हम गिरिराज जी रक्षा करेंगे। सब लोग अपने गाय, अपने बच्चे, अपने स्त्री के साथ आए और भगवान गिरिराज को उठाकर अपने बाएं कनिष्ठ उंगली पर धारण किए 7 दिन तक, और सारे ब्रजवासियों को उन विशाल हॉल में 21-22 किलोमीटर के हॉल में सबको रक्षा किए रखे। यह है भगवान की विशेष लीला, ऐश्वर्यमय लीला है, इसके द्वारा ब्रजवासियों की रक्षा किए। ये सब लीलाएं विस्तार से दशम स्कंध में है वर्णन किया गया है। फिर इस अध्याय के अंतिम श्लोक में रास लीला का स्मरण कर रहे हैं उद्धव जी। सरसिकर इमृष्टम मानयन रजनी मुखम गायन कल्पदमरे में श्रीणाम मंडल मंडन। शरद शशि करई मिष्टम, शारदीय चंद किरणों से अलंकृत उज्ज्वल रजनी मुखम मानयन, रात्रि मुख का अभिनंदन करते हुए कल्पदम गायन, श्री कृष्ण अपने बंसी पर मधुर गीत गाए, और उस गायन से क्या हुआ, स्त्रीणा मंडल मंडन हरे में गोपियों के मंडल को सुशोभित करते हुए उनके बंसी ध्वनि को सुनकर गोपियां आ गईं और श्री वृंदावन धाम में उन गोपियों के साथ रास विहार किए, रे में विहार किए, रास क्रीड़ा किए। तो इस रास क्रीड़ा को श्रीमद् भागवतम में महारास कहा गया है। वास्तव में विविध प्रकार का रस, अनेक प्रकार का रस जब एक साथ संयुक्त होता है, जुटता है, तो उसको महारास कहते हैं, रास कहते हैं। तरह तरह के रस का स्वादन एक साथ होता है तो उसको रास कहते हैं। श्री भगवान रसिक शेखर हैं, रसिक चूड़ामणि हैं, विविध प्रकार के रसों का स्वादन करना चाहते हैं। यद्यपि भगवान आत्मा राम है, पूर्ण काम है, फिर भी उस रस को विचित्र रूप में आस्वादन करने के लिए अपने रस वैचित्री प्रकट करते हैं, वही रस वैचित्री रास है। अपनी ही अंग भूता अंतरंगा अपनी जोग माया के प्रभाव से विविध रूप धारण करके रस का स्वादन करते हैं, ये भगवान की एक विशेष लीला है, विशेष आस्वादन है। रजनी मुखम कहा गया संध्या के समय, संध्या काल में शरद शिकरई नायक रूप शरदकालीन चंद्रमा हाथ मलने के द्वारा मृष्टम धाम धूप को अपसारित हटाते हुए रजनी मुख को अर्थात स्वाधीन भर्तृका नायिका जैसे रजनी के मुख मानयन अभिनंदित करते करते मैं भी इस प्रकार करता हूँ, इस भाव से श्री कृष्ण स्त्रीणाम मंडल मंडना अपने प्रेयसी ब्रज रमणियों के साथ मंडल के साथ रास विहार लीला में सुशोभित हुए। ने अव्यक्त मधुर गान करते करते कीड़ा रास विहार किए। उस शरद पूर्णिमा में जब चंद्रमा सूर्यास्त के तुरंत बाद पूरब क्षितिज पर निकलता है संध्या के समय पूर्णिमा की रात्रि में, खास करके बरसात के बाद जो पूर्णिमा चालू होती है शरद पूर्णिमा अश्विनी पूर्णिमा, तो उसमें वातावरण बड़ा मधुर होता है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडा। उस समय का समशीतोष्ण वातावरण में जब चंद्रोदय हुआ, स्पेशल चंद्रोदय, तो चंद्रमा के उगने से जो रात्रि सामने आई संध्या वो अद्भुत रमणीय दिख रही थी, बहुत सुंदर। आकाश में लालिमा छा गया, उसका एक श्रृंगारिक उदाहरण देते हैं, जैसे प्रदेश में गए हुए प्रियतम जब कुछ काल के बाद आते हैं तो अपनी प्रिया से मिलने के बाद सम्मान करते हुए मानो अपने प्रिया अपनी पत्नी के मुख में रोरी लाली लगा दें, और इस प्रकार वो उनको माला डाले चंदन लगावे उनका अभिनंदन करे और उसके मान के लिए उसके मुंह में रोली मल दे, उस प्रकार जैसे अपने प्रेयसी के मुख में प्रियतम के द्वारा जो लाली लगाई जाती है वैसे ही मानो चंद्रमा रजनी के मुख में रोरी लगा दिया, एकदम चारों तरफ लालिमा छा गई। और उस समय श्री वृंदावन में अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए थे, बहुत सुंदर दृश्य था। उस सुंदर वातावरण को देखकर आत्मकाम आत्माराम पूर्ण काम श्री भगवान में कामना उत्पन्न हो गई वृंदावन के सौंदर्य को देखकर। और वह कामना किस रूप में हुई कि जैसे चंद्रमा अपनी रजनी रूप नायिका का श्रृंगार कर रहा है वैसे मैं अपने ब्रज रमणियों के साथ विहार करूंगा, इसलिए श्री कृष्ण में एक इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा वो प्रेम जनक इच्छा अपने गोपियों के साथ रमण की इच्छा उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने बंसी बजाया और उस बंसी के द्वारा अपने प्रेयसी और श्रीमती राधा रानी ललिता विशाखा आदि गोपियों को नाम रख रख करके बुलाने लगे, तो उनके बंसी ध्वनि को सुनकर गोपियां दौड़ती हुई गई और उस बंसी बट के पास जमुना के तट पर एकत्रित हुई और अपने प्रियतम के साथ उनको खेलने का नृत्य करने का गाने का आनंद विहार करने का प्रचुर अवसर प्राप्त हुआ, उसको महारास कहते हैं, जिसका वर्णन दशम स्कंध में 5 अध्यायों में है, 29, 30, 31, 32, 33। इसको श्रीमद् भागवतम के 5 प्राण महाप्राण कहा गया है, ये 5 अध्याय भागवत के प्राण स्वरूप है, बहुत विस्तार से सुंदर ढंग से वर्णन है, जिसका स्मरण उद्धव जी एक श्लोक में कर रहे हैं कि इस प्रकार अपने प्रेयसियों के साथ श्री कृष्ण रास विहार किए, अनेकों प्रेयसियां लाखों लाख गोपियां एकत्रित हुई उनके साथ नृत्य गायन आनंद विहार जमुना विहार सब कुछ हुआ, जिसका ज्ञान उद्धव को है। उद्धव जी ब्रज में गए हैं, गोपियों के प्रेम को निकट से देखे हैं, इसलिए विदुर जी के सामने
उस मधुर भाव का भी स्मरण कर रहे हैं। इसके साथ यह अध्याय यहाँ पूरा होता है। आगे मथुरा के लीलाओं का स्वादन कल किया जाएगा। कंस वध के बाद भगवान कृष्ण का विवाह, फिर जरासंध जैसे असुरों के साथ युद्ध, फिर भगवान के पढ़ाई लिखाई जो भी वो सब का वर्णन होगा, फिर रुक्मिणी सत्यभामा कालिंदी आदि के साथ विवाह, सब का वर्णन कल मथुरा लीला द्वारिका लीला का वर्णन किया जाएगा। क्योंकि उद्धव जी अभी ब्रज के लीलाओं का स्वादन किए, इसके बाद फिर मथुरा और द्वारिका के लीलाओं पर भी विचार करेंगे, वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधे।